और आगे चलकर इस बात की भी वजाहत आएगी कि अगर इंसान इस मसले के अंदर तवज्जो ना दे और फोमोस उस चीज का ना निकाले जिस पर फोमोस वाजिब है, तो उसका वो माल इस्तेमाल करना ही हराम हो जाता है। अभी तफसील उसकी आगे आएगी। और जो इमाम का ही हक अदा करे उसके जनाजे में इमाम खुद शरीक होते हैं। बाकायदा बीबी शतीता और इत्तफाक से जो आज हमारी गुफ्तगू हो रही है उसमें आपकी खिदमत में ताज़ियत भी पेश करनी है हमारे सातवें इमाम इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में बीबी शतीता थी और दूसरी सदी हिजरी थी, नेशापुर में रहा करती थी और मोहम्मद इब्ने अली नेशापुरी के जरिए बाकायदा एक कपड़ा फोमस के तौर पर निकाला। उस कपड़े की जो मालियत थी वो 4 दिरहम थी और साथ में एक दिरहम फकत उनकी बचत थी शतीता की। और वो इमाम को खुलूस के साथ वो रकम भिजवाई। और तो इमाम ने बाकायदा शतीता को सलाम कहलवाया और कफन का एक टुकड़ा भी तोहफे में भिजवाया और कहा कि ये वो कफन है जिसका धागा मेरी दादी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने बुना था। और इस धागे को कफन बनाने में मेरी बहन हलीमा ने काम किया था। तो इमाम ने अपना तैयार करदा कफन शतीता को भिजवा दिया और इमाम ने उससे ये भी कहा कि जाकर शतीता से कह देना कि 19 दिन के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। और इमाम ने उसके साथ 40 दिरहम भी भिजवा दिए, कहा कि इसमें 16 दिरहम तुम्हारे अपने खर्चे वगैरह के हैं वो तुम अपने ऊपर खर्च करो और 24 दिरहम तुम सदका करना और हम खुद उसकी नमाज जनाजा में शरीक होंगे। और जो भी हमारे मकतब की पैरवी करता है, इमाम ने फरमाया, उसके जनाजे में हम शरीक होते हैं। तो एक दिरहम सिर्फ बचत थी और वो जो कपड़ा 4 दिरहम का शतीता ने भेजा था फोमोस के तौर पर और इखलास नियत के साथ, इमाम ने उस कपड़े को अपने कफन के तौर पर रख लिया था। तो उससे आप अंदाजा लगाएं, इस बात से अंदाजा लगाएं कि कोई खिलाफ के साथ इस इबादत को अंजाम देता है फोमोस को अदा करने की और बारीक बीनी से, वरना होता कि टोटल एक दिरहम बचत इंतहाई गरीब औरत भी थी यकीनन जो पूरे साल में सिर्फ एक दिरहम बचा पा रही, कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा जो 4 दिरहम का है सिर्फ वो बचत हो रही है, तो सर पे नजर से भी काम ले सकती थी। कितनी उसकी जिंदगी जो है वो आपने देखा कि 19 दिन ही बाकी रह गई थी, लेकिन फिर भी उसने ये चीजें इमाम तक भिजवाई और इंतहाई बारीक बीनी से यकीनन कौम के मसाइल के ऊपर निगाह करते हुए जो भी बचत हुई थी वो इमाम की तरफ रवाना की। तो इस लिहाज से शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का एक पैगाम ये भी है कि इंसान खुलूस नीयत के साथ अपने इबादत फौज को जो है अदा करे, बारीक बीनी से काम ले और सही तौर पर मसाइल शरीयत को सीखे, जो कि इंशाल्लाह आज की गुफ्तगू के अंदर हम बयान करें। इंसान जब खुमस को अदा करना चाहता है, खुमस किसको अदा किया जाए? देखिए इसकी वजह ये भी है सवाल की, क्योंकि लोग आजकल अपनी मर्जी से खुमस तकसीम करने लगे, मर्जी से, हत्ता कि यहां तक एक सवाल उठता है कि क्या हम किसी और मर्जी या मुज्तहिद को खुमस दे सकते हैं? मसलन अगर आप आयतुल्ला सिस्तानी की तकलीद में हैं, आप कहें कि मैं ये खुमस किसी और मुज्तहिद आदिल को दे दूं, तो यहां तक इस बात की पाबंदी है कि नहीं, सिर्फ अपने मर्जे तकलीदी को खुमस दिया जा सकता और किसी दूसरे मर्जे को नहीं दे सकता। अब कुछ इसके अंदर तफसीलात हैं जिमनी मसाइल को छोड़ते हुए, बस यहीं की हद तक सही मसले को रखिए कि अपने ही मर्जे तकलीद को खुमस देना अच्छा इसके अंदर भी आपको पता है कि होमोस के दो हिस्से होते हैं, तो क्या दोनों के दोनों हिस्से होमोस के अपने ही मुज्तहिद को दें, एक सहम इमाम होता है एक सहम सादात होता है। तो इस मसले के अंदर ये है कि आगा कोई और आगा सिस्तानी के नजदीक है, सहम इमाम तो मुज्तहिद या उसके वकील ही को देना है सहम इमाम। अलबत्ता सहम सादात की अगर उन तमाम 11-12 शर्तों से आप वाकफियत रखती हैं जो भी आगे चलकर आएंगी, तो सहम सादात आप खुद भी दे सकती हैं। और अगर आपको मसलन शराइत का इल्म ना हो, या मसलन आप उस जिम्मेदारी को कबूल ना करें, पता नहीं हो सकता है कि शर्तें सही पाई जाती हैं नहीं पाई जाती, तो फिर सहम सादात भी आप मुज्तहिद या उसके नुमाइंदे ही को दें। तो यानी खुद दे सकते हैं आप इन शराइत से वाकफियत रखते हुए, बल्कि उलमा ने यहां तक कहा है कि अगर आप शराइत से वाकफियत रखते हुए सही मुस्तहिद तक खुद से सहम सादात पहुंचा भी सकती हूं, तब भी एहतियात मुस्तहब ये है, ज्यादा एहतियात से करीब ये है कि सहम सादात भी आप मुज्तहिद या उसके वकील ही हो। क्योंकि अगर एक दफा आपने इन शराइत का ख्याल रखते हुए मसलन दे दिया कोस और बाद में पता चला कि नहीं ये तो आपने गलत फहमी में दे दिया, फला फला शर्त तो पाई जाती नहीं थी इनके अंदर, तो आप जिम्मेदार रहेंगी उस सहम सादात की। लेकिन अगर आपने एहतियात से काम लेते हुए मुज्तहिद या उसके नुमाइंदे को दे दिया, और बिलफर्ज अगर उसने भी गलती से किसी को अपने पास से किसी गैर मुस्तहिद तक भी पहुंच गया बिलफर्ज, तो कम से कम आपका जिम्मा अदा हो जाएगा, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रहेगी, ये एक इसका एक फायदा। तो जो अफराद ऐसी जिम्मेदारी को कबूल ना करना चाहें, या वो शराइत से वाकफियत ना रखते हों, या शराइत की तफसीलात में कंफ्यूजन का शिकार रहें, तो फिर वो सहम सादात भी आगा सिस्तानी की तकलीफ में होने के बावजूद भी, आगा कोई की तकलीफ में होने के बावजूद भी मुज्तहिद या उसके वकील ही को दें। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं सारी शर्तों से मैं बखूबी वाकिफ हूँ, खानदानी के अफराद हैं, एक एक चीज से आप वाकफियत रखती हैं, तो ठीक है मुज्तहिद ने फिर इन दो मराजे ने इजाजत दी है खुद से देने। लेकिन इमाम खुमैनी या रहबर मौजम आयतुल्ला खामेनेई उनका फतवा ये है कि सहम सादात भी मुज्तहिद या उसके वकील ही को देना, खुद से नहीं दे सकते। तो उस लिहाज से, और लेकिन अगर आपकी निगाह में मसलन कोई ऐसा सैयद है और आप उनकी तकलीफ में हैं, और आप सहम सादात अपने उस रिश्तेदार को या मोहल्लेदार को या किसी को भी आप शराइत जिसके अंदर पाई जाती हैं उसको देना चाहती हैं, तो फिर आपको उनसे इजाजत लेकर परमिशन लेकर फिर आप उसको दे सकती हैं। वो अगर इजाजत दें तो दे दें, वो इजाजत अगर नहीं दें तो फिर नहीं दे सकते। और आमतौर पर इजाजत मिल सकती है अगर केस बिल्कुल सही केस आप उनके सामने प्रेजेंट करें तो वहां से इजाजत मिल जाती है। अच्छा, अब एक मसला ये है कि अभी आपने सुना कि मुज्तहिद या उसके वकील को दें, तो मुज्तहिद किस वकील को दें? देखिए वकला की भी कुछ अकसाम है, मुज्तहिद के जो वकील होते हैं बस एक ही आप ना सुने कि बस एक उसके इख्तियार में फर्क होता है, थोड़ी सी आज एक तरह की बात भी जरा सुन लें। देखिए आमतौर पर मुज्तहिदीन के जो वकील होते हैं उनके पास जो इजाजतनामे होते हैं मुज्तहिद की तरफ से, उनका जो मजमून होता है वो तकरीबन एक जैसा ही होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है, फिर उसके बाद एक खुतबा खुतबा मसनूना टाइप का होता है, और फिर उसके बाद लिखा होता है मैं फुला साहब को या फुला आलिम को फुला फुला इजाजत देता हूँ, और फिर मैं इनको वसीयत करता हूँ कि वो तकबे और एहतियात से काम लें, और मोमिनीन को वसीयत करता हूँ कि वो इन अपराध से ताउन करें, इन जिनके भी नाम वो होता है, और आम तौर पर कमोबेश इसी तरह से होता है, और एक लाइन के अंदर वो इजाजत होती है। अच्छा, अब वकीलों की जो अकसाम है उसमें कई अकसाम है वकला की, इसमें एक होता है वकील वकील मुतलक। वकील मुतलक के पास मुज्तहिद के पास जितने अख्तियार होते हैं सारे इसके पास भी होते हैं, सिवाय फतवा देने के और अहकाम को बनाने। यानी खुमस का मसला हो, सदकात के मसले हो, रद्द मजालिम हो, मजहूलुल मालिक हो, जो ये वकील मुतलक होता है, और ये ऐसा वकील होता है कि इससे خمس کی رسید لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وکیل مطلق سے. امام خمینی جس وقت حیات تھے تو پاکستان میں ان کے دو وکیل مطلق تھے، یعنی ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے، بس صرف فتویٰ نہیں دے سکتے، باقی تقریباً وہی اختیارات جو مجتہد کے پاس ہوتے ہیں، مجتہد نے اپنے وہ اختیارات ان کو دیے ہوتے ہیں. اور آپ امام خمینی کی شاید دو وکیل مطلق تھے پاکستان میں، آپ کوئی کے تقریباً چار پانچ تھے، اور آپ سیستانی کا شاید ایک بھی وکیل مطلق پاکستان میں نہیں، یعنی اتنے اختیارات کا جو حامل ہیں. رہبر کے بھی ایک تھے، وہ فی الحال اب نہیں ہیں، اب آگے کی صورتحال اتنی واضح نہیں. تو اچھا، ایسے جو وکیل مطلق ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ طلاق تک کے اختیارات ہوتے ہیں، مثلا کسی عورت کا شوہر ہے وہ نان و رفقہ بھی نہیں دے رہا، ظلم بھی کر رہا ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، اپنے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، اب ایسی عورت بالکل معلق ہو کے رہ جائے گی، اس کا کیا ہوگا معاشرے کے اندر؟ تو بعض اوقات وکیل مطلق وہ مجتہد کی طرف سے اجازت یافتہ ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کو طلاق بھی جاری کر سکتا ہے. آپ سیستانی کا اس لحاظ سے پاکستان میں کوئی بھی وکیل مطلق نہیں ہے، اور بہت ہوا تو لوگ کوشش کر کے یا تو ایران عراق میں موجود جو مجتہدین ہوتے ہیں طلاق کے معاملات میں، ان سے طلاق کو جاری کرواتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کا کوئی کیس پھنس گیا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا اور ظلم بھی کر رہا ہے، نان و نفقہ وغیرہ بھی نہیں دے رہا ہے. اور آبائے سیستانی نے اس کا اختیار جو یہاں مشہور ہے کہ آبائے موہری جو کویت میں ہوتے ہیں ایک وکیل، ان کے وکیل مطلق ہونے کے اختیارات ہیں، صرف وہ طلاق عام طور پر جاری کرتے ہیں، زیادہ نہیں ہے، دو تین چار اس طرح سے آبائے سیستانی نے شاید پوری دنیا میں ان کے ہیں کہ جو کہ طلاق دینے کا اختیار رکھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی عالم آپ کو یہاں پر کہے کہ وہ آغا سیستانی کی طرف سے اجازت یافتہ ہے اور ان کا وکیل مطلق ہے، وہ طلاق جاری کر سکتا ہے، کہ دو تین دفعہ اس کے شوہر کو بلایا نہیں آیا تو طلاق جاری کر دی، تو ایسا کوئی مسئلہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، کسی کے پاس اتنے اختیارات نہیں. اس کے بعد دوسرا ہے جس کو کہتے ہیں وکیل مالی، اس کو صرف پیسے جمع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اس وکیل مالی سے رسید لینا بھی ضروری ہوتی ہے. اس کا کام صرف اور صرف فونس کے پیسے جمع کرنا ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. اچھا، تیسری قسم بنتی ہے جسے کہتے ہیں وکیل جزئی، اس کو مجتہد فونس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ تم فونس بھی جمع کرو، اور دیگر جو اموال ہیں مجتہد ان کی بھی اجازت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ مجتہد اس کو ایک اتھارٹی دیتا ہے کہ تم یہ جو خمس تم جمع کر رہے ہو اس کا اتنا فیصد تم یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے دینی امور میں خرچ کرنے کی تقوی اور احتیاط کے ساتھ تمہیں میں خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہوں. کبھی وہ ایک تہائی ہوتا ہے، سلوس جس کو کہتے ہیں، یا مثلا کبھی نصف ہوتا ہے، آدھا، وہ ہر شخص کے اپنے اعتبار سے مجتہد نے اجازت دی ہوتی. یعنی جو وکیل جزئی ہے اس کو خمس اور دیگر اموال کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ اماؤنٹ خرچ کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے، اور وہ مجتہد کی طرف سے اس کو اجازت ملی ہوتی ہے، اور باقی جو اس اختیار کو استعمال کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کو بھی وہ تمام مال مجتہد کو بھجوانا پڑتا ہے. چاہے وکیل مالی ہو چاہے وکیل جزئی ہو، ان سے رسید لینا ضروری ہے، رسید لیں. ابھی اس کا مسئلہ بھی آگے چل کر آئے گا. اور اگر ان میں سے کوئی رسید نہ دے تو کم سے کم اگلا فونس ان افراد کو نہیں دیا جا سکتا، اور رسید کون سی وہ بھی ابھی آگے چل کر آئے گا کون سی والی رسید دیں. اچھا، اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ وکیل مالی اور وکیل جزئی، اس میں ایک فرق ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ وکیل مالی بھی فارم جمع کر رہا ہے، وکیل جزئی بھی فارم جمع کر رہا ہے، تو ابھی آپ نے سنا کہ وکیل جزئی کو کچھ مال خود سے خرچ کرنے کا اختیار مجتہد دیتا ہے، لیکن وکیل مالی کے پاس وہ اختیار نہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ مثلا آپ کے محلے میں ایسا کوئی غریب سید موجود ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے پیسہ چاہیے، شادی کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی اور اس طرح کی کوئی بات پیش آ گئی اہم ضرورت، تو آپ وکیل جزئی کے پاس جا کر اس سے آپ ڈیلنگ کر سکتی ہیں اس بات کی کہ آپ یہ والا کیس آیا ہے تو اس کے پاس جتنی اتھارٹی ہے وہ اس کو استعمال کر کے فونس کے پیسوں میں سے اس کو دے سکتا. लेकिन जो वकील माली है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती, वो सिर्फ जमा करेगा भिजवाएगा, इसके अलावा और कोई काम उसका नहीं होता, तो उससे बातचीत बेकार है। वो अपने इख्तियार को इस लिहाज से उसको इस्तेमाल करने के उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास बल्कि इख्तियार ही नहीं कि वो किसी को दे सके। अच्छा, ये नंबर चार कर लीजिए इसको, पांच के बजाय उसको एक और वकील की कस्म है। अगर इसको वकील नहीं कहना चाहिए, वकील चाहे तो काट दें, इसको कहते हैं माजून। ये भी नुमाइंदा होता है मुज्तहिद का, लेकिन ये वकील नहीं होता है। इसको सिर्फ उमूर हस्बिया में इजाजत मिलती है। एक फकी इस्तिलाह है उमूर हस्बिया या उमूर हिजबिया, कि वो उमूर जो माशरे के निजाम को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। मसलन मुज्तहिद ये देखेगा कोई मस्जिद खाली और उसका कोई निजाम चलाने वाला नहीं, तो मुज्तहिद वहां पर एक ट्रस्टी को मुकर्रर कर सकता है, यानी उसके पास उमूर हस्बिया का इजाजत नामा होता है कि ये तुम मस्जिद की ट्रस्ट चला सकते हो। अच्छा, जितने भी और वकीलों की जो आपने अकसाम से पहले सुनी, आबा सिस्तानी का अमूमन तरीकेकार ये है कि वो गैर रूहानी को वकालत नहीं देते। गैर रूहानी की क्या मायने, यानी आलिम होना चाहिए उसको। अच्छा, सिवाय आबा सिस्तानी कराची में सिर्फ एक ही हैं कि जो कि इस लिहाज से कहा जाए कि गैर उलामा में शुमार होता है और उनको उन्होंने अपनी वकालत दी है, लेकिन उसके बाद आज तक कभी भी गैर रूहानी को आगा सिस्तानी ने वकालत नहीं दी। लेकिन ये जो माजून होते हैं, इसके लिए आलिम दीन होना भी शर्त नहीं। इलाके के निजाम को संभालना, बहुत सी मुसालहती कमेटियां जो हैं उसके सिलसिले में इजाजतें होती हैं, मतलब लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया उनके मसाइल को सॉल्व करने के हवाले से जो है मुज्तहिद कुछ इजाजतें देता है, और कोई किसी के नाबालिग का कोई मसला है, मतलब नाबालिग यतीम हो गया है और उसे कोई देखभाल करने वाला नहीं है, अब लोग इसके पैसे जो हैं और इसकी जायदाद इमलाक नोच नाच के खा जाएंगे और उसके नुकसान होगा, तो उसका कोई कायम या कोई निगरान या उसको देखभाल के लिए मुज्तहिद किसी को इजाजत दे सकता है कि तुम फला फला इसकी चीजों की देखभाल करो। कोई पागल है मसलन, अब पागल की देखभाल कौन करेगा, क्या होगा, हो सकता है उसके रिश्तेदार ना हो या काबिल एतबार रिश्तेदार ना हो, और मसलन वालदैन का उसके इंतकाल हो गया हो, तो इसके लिए मुज्तहिद की तरफ से माजून मुकर्रर हो जाते हैं। तो माशरे के निजाम को उस लिहाज से चलाने के लिए कुछ इस तरह की चीजों की जरूरत होती है। आप ये सोचें कि ये इतने इनके लिए फकत क्या शर्त होती है कि कोई भी शख्स जो कि आदिल हो, आलिम होना भी जरूरी नहीं है, आदिल हो, समझता हो चीजों को, हलाल और हराम का ख्याल रखता हो वो, और उसको मुज्तहिद की तरफ से इजाजत मिल जाती है कि तुम फला फला मेरी तरफ से मेरी नियाबत में फला फला उमूर को संभालो। अब ये माशरे के अंदर उस लिहाज से काम करता है। आका पोइते सिर्फ कराची में तकरीबन 200 या 250 माजून हुआ करते थे, और इसी तरीके से आका सिस्तानी के भी बहुत से हैं, तकरीबन महाराजे ने बहुत से लोगों को इस तरह से इजाजत दी हुई। तो आपने देखा कि मुज्तहिद के जो वकला हैं उनके इख्तियारात में बहुत से फर्क हैं, वकला की अकसाम हैं, और उसके एतबार से ये इख्तियारात यूं आपको पता है कि आजकल बहुत सारे अफराद जिनके पास उस किस्म के इख्तियारात नहीं होते हैं और वो अपने आप को प्रेजेंट ऐसा करते हैं कि जैसे हमारे पास तलाक देने के भी इख्तियारात हैं और फलां चीज के भी इख्तियारात हैं, ताकि उस लिहाज से आपको रहे कि वकीलों की अकसाम हैं और किसके पास किस हद तक इजाजत होती है। और वो मैंने आपको बता दिया कि वकील मुतलक के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं, उसके बाद वकील जुजी के पास हैं, फिर वकील माली के पास हैं, वो भी सिर्फ जमा करने की हद तक, और चौथी चीज होती है माजून, इजाजत याफ्ता होते हैं कुछ खास खास मसलों के अंदर, वो सिर्फ दखल दे सकते हैं। अच्छा, अब एक मसला ये भी पेश आता है कि बहुत से अफराद ऐसे होते हैं कि जो कुछ पुराने मुज्तहिदीन के वकला होते हैं जो कि मुज्तहिदीन इंतकाल कर रहे हैं। देखिए, मुज्तहिद के खुद फतवे के एतबार से भी एक जुमला कहा जाता है कि इज़ा मातल मुफ्ती मातल फतवा, यानी मुज्तहिद के इंतकाल के साथ ही उसका फतवा भी फौत हो जाता है, यानी आपको फौरन किसी नए मुज्तहिद की तकलीफ करना होती है, और उस नया मुज्तहिद फिर अगर इजाजत दे के पुराने मुज्तहिद पर बाकी रहो तो फिर बाकी रहते हैं, और वो अगर इजाजत नहीं दे तो बाकी नहीं रहते। तो इसी तरीके से ये होता है कि जैसे ही मुज्तहिद का इंतकाल होता है उसके सारे वकला माजूर हो जाते हैं, सारे वकला खत्म। अब या तो ये वकला نیا جو مجتہد آیا بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ میں جو پرانے وکلا اس مردہ مجتہد کے تھے میں ان کو بھی اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں، یا تو وہ اس طرح سے مقرر کرتے یا یہ کہ یہ افراد وکلا پھر اپروچ کریں دوبارہ اور ان نئے مجتہد سے دوبارہ وکالت نامہ لیں۔ تو یعنی سارے وکالت نامے یہ کینسل ہو جاتے ہیں، یعنی سابقہ مجتہد کے وکیل کی وکالت اسی وقت ختم ہو جاتی جیسے مجتہد کا انتقال ہوتا ہے، جس نے اس کو وکیل مقرر کیا تھا وہی نہیں رہا تو اس کی وکالت کہاں سے باقی رہے گی۔ تو بہت سے لوگ پرانے اجازت نامے دکھا کر بھی لوگوں سے وصول کر رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ اب ان کے پاس نمائندگی نہیں رہی، یا تو یہ نئے مجتہد کی جن کے آپ تقلید میں ان کا اجازت نامہ ان کے پاس ہو، سابقہ کسی مجتہد کا نہیں چلے گا، تو وہ یا تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے تو پھر اس کو خمس وغیرہ دیا جا سکتا ہے، ورنہ پرانے اجازت نامے سارے کینسل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اب سہم سادات، سہم امام کی تو آپ نے اتنی تفصیل سنی کہ وکیل کون سے ہوتے ہیں اور کیا اختیارات ہوتے ہیں اور کتنی رسید لینا ضروری ہے اور اسی کو دینا ضروری ہے، کسی اور وکیل کو بھی دے سکتے ہیں، یہ سہم امام کا پارٹ تھا۔ اب سہم سادات ہے، سہم سادات میں ایک گروہ مجتہدین تو وہ جو کہتا ہے کہ سہم سادات بھی مجتہد ہی یا اس کے وکیل ہی کو دو، تو وہ بھی اس میں سے نکل گئے، جیسے رہبر معظم ہے یا مثلاً امام خمینی وغیرہ ہے، لیکن آمد سستانی ہوں یا عبد اللہ کوئی ہوں یا کچھ مراجع اور بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ شرائط کا خیال کرنا پڑے گا سہم سادات کے سلسلے میں، کچھ شرطیں ان کا خیال کر کے آپ دے سکتی ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ سب پہلی ایک تو شرط یہ ہے کہ جسے بھی آپ سہم سادات دیں اس کا سید ہونا کنفرم ہونا چاہیے، سید ہونا بالکل کنفرم۔ اچھا سید کی پہچان کیا ہے؟ تو سید اسے کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے سید ہو، یعنی باپ اگر غیر سید ہے اور ماں اس کی سیدانی ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سے ماں کی طرف سے سیادت جو اس کے اندر آ رہی ہے تو یہ احترام کا اور اس کا مستحق تو ہے، لیکن اس کو سہم سادات نہیں دیا جا سکتا ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے سید ہونا چاہیے اس کو، یعنی اس کا باپ سید ہو چاہے خواہ ماں غیر سادات میں سے ہو، سیدانی نہ ہو، لیکن اگر باپ سید ہے اور یہ مستحق ہے یہ شخص، تو اسے باپ کی طرف سے سید ہونا چاہیے، ماں کی طرف سے اگر سے ہی عزت و احترام کا مستحق ہے، لیکن کیونکہ اس کا نسل باپ سے چلتی ہے اور باپ اگر غیر سید ہے تو یہ اس کی اولاد بھی غیر سید ہی شمار ہوگی، چاہے ماں کی طرف سے یہ سید ہو لیکن نسل کیونکہ باپ سے چلتی ہے اور سیادت وہاں سے منتقل ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کو یہ احترام کا مستحق ہونے کے باوجود بھی اس کو سہم سادات نہیں دے سکتے۔ جی ٹھیک ہے، دیگر اموال سے اس کی مدد کی جائے گی، ایسا نہیں کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو کچھ نہ دیا جائے اور ایک ظالمانہ سلوک پہ گویا سے کیا جائے، مقصد کہنے کا کہ سہم سادات سے نہیں دیا جا سکتا، باقی دیگر اموال ہیں۔ اچھا اب آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ سید ہے، یقین یا اطمینان، اگر آپ کو یقین اور اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو سہم سادات نہیں دے سکتے۔ ایک بار خود میں دھوکہ کھا چکا ہوں، یعنی کنفرم تھا مجھے بالکل کہ فلاں شخص صاحب سید ہے، اور جب انہوں نے پیسے لے لیے اور کچھ عرصے بعد مجھے انہوں نے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو سید نہیں، تو وہ گویا ظاہر ہے وہ بھی غریب تھے، پیسے لے کے استعمال کر چکے تھے، تو وہ پھر میں نے بڑی مشکل سے انہیں خود ہی اپنے ذاتی پیسے سے ادا کر کے وہ اس جو ادا کیا کہ بہرحال غلطی میری تھی کہ مجھے یعنی صحیح طور پر، یعنی اگرچہ میں نے اس وقت اطمینان کیا تھا لیکن اگر بعد میں پتہ چلے کہ وہ غلطی ہو گئی تھی آپ سے اطمینان کے باوجود بھی، تو آپ کے ذمے وہ رہ جاتا ہے۔ حل ہاں وہ دوبارہ اماؤنٹ ادا کرنی پڑے گی، یا تو اس سے واپس لے لیں کہ بھائی آپ کو غلطی سے چلا گیا آپ مجھے واپس کر دیں، آپ تو سید ہی نہیں ہے، لیکن وہ اگر کہے کہ نہیں بھائی میں تو کر کے استعمال کر چکا ہوں، مجھے کیا پتا آپ نے مجھے کیوں سمجھ کے دیا تھا وغیرہ کوئی بھی قسم کی بات، تو اس کا ذمہ ادا نہیں ہوگا اور اس کو دوبارہ نکالنا پڑے گا، وہ غلطی آپ کی تھی، یا تو آپ مجھ سے وکیل تک پہنچا دیتے تو پھر آپ کا مسئلہ سالو تھا، وہ وہاں سے غلطی ہو جاتی تو آپ ذمہ دار نہیں تھے، لیکن کیونکہ آپ نے یہ اپنی ذمہ داری اپنے ناتواں کاندھوں کے اوپر اٹھا لی تھی جسے میں نے اٹھائی تھی، تو پھر آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا یہ والی چیز۔ अच्छा, अब इत्मीनान अगर नहीं हो रहा है आपको तो फिर आप नहीं दे सकते। अच्छा, अब ये गलती, अच्छा लोग आमतौर पर हमने देखा है कि लोग उलमा से बड़े बदगुमान होते हैं। हम उनके पास गए और उनसे कहा कि हम सैयद हैं और उनके सामने हमने तबादला किया और उन्होंने हमें जो है ना दिया ही नहीं सहमे सादात, बल्कि उसी से थोड़ी देर पहले हमारे फला भाई ने खुद ले जाके या फला रिश्तेदार ने उनको फोन से ले जाकर दिया, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। वो उसकी वजह ये होती है कि उनको इत्मीनान नहीं हो रहा है। देखिए, इत्मीनान हर शख्स का एक जाती एक वो होता है, यानी ऐसा नहीं है कि वो मुज्तहिद का कोई वकील है उसके पैसे के ऊपर जो है ना, वो आमतौर पर लोग बदगुमानी का शिकार बहुत ज्यादा होते हैं। कितने उलमा है बाकायदा उनके पास आना जाना रहता है, खुद हमारे मौलाना गुलाम अली वजीरी साहब, वो कहते हैं कि लोग आकर हम पे नाराज होते हैं, हमें इत्मीनान हो ही ना, पहली दफा उस आदमी को देख रहे हैं, कोई भी आके कह रहा है किसी दूसरे इलाके का आकर कि मैं सैयद हूँ, मेरी इमदाद करें, मेरे साथ ये मसले, हमें इत्मीनान ही नहीं हो रहा कि सैयद है या नहीं। बाद में कोई पुराने बोसीदा कागज पे पता नहीं किस किस से लिखवा के ले आते हैं, उस आदमी का आलिम का भी हमें पता नहीं होता कि जिनसे वो लिखवा के लेकर आया है ये अपराध कौन है। तो अच्छा, सहमे सादात मुस्तहिक सादात का हक है, तो अगर हम वो इसमें एहतियात ना करें तो वो क्या होगा कि किसी असल मुस्तहिक का हक मार के इस मशकूक आदमी को चला जाएगा मतलब। और इस तरह के बहुत अपराध ऐसे हैं कि जो इस तरह की चीजें जिन्होंने प्लास्टिक कोटिंग कराई हुई होती हैं, आप देखिए उनकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उन्होंने प्लास्टिक, क्योंकि वो काफी अरसे तक उस लिखे हुए को चलाना होता है उनको, जगह जगह बीसियों जगह से वो इस तरह से पैसा दे रहे होते हैं। तो जाहिर है उनके पास इतने ज्यादा इस तरह के करप्शन के केसेस भी आए हुए होते हैं, इतना ज्यादा वो मेरी तरह जैसे मैंने कहा कि दूध का छला जला फिर छाछ फूक फूक के पीता है, तो जो किसी माली डर इस तरह से पहुंच चुकी हो तो वो भी सोचेगा कि भाई मैं एहतियात करूँ वरना अपनी जेब से मुझे पे करने पड़ जाएंगे, तो वो इसको बेहतर समझता है कि उसको इनकार कर दे। तो वो उसके पीछे ये वाली बातें होती हैं, क्योंकि माशरे के अंदर धोखाबाजी इतनी ज्यादा आम होती जा रही है। तो वो अच्छा, इसके नतीजे में होता क्या है कि बाजों का कोई वाकयातन सही मुस्तहिक के पास भी खुमस पहुंचने से रह जाता है, लेकिन वो क्या करे, मजबूरी होती है। इंसान के दिल को इत्मीनान आना, हर शख्स का इत्मीनान का कैफियत अलग होती है, कुछ को जल्दी इत्मीनान आ जाता है, कुछ को नहीं आता है, और हर शख्स अपने इत्मीनान का पाबंद है। तो बहरहाल सैयद होना इस लिहाज से ये इत्मीनान होना चाहिए, इत्मीनान नहीं है तो उसे नहीं दे सकते। उसके बाद अगली शर्त ये है, सैयद की पहचान तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ एक बात इसमें और है कि सैयद कैसे पता चलेगा, या तो अपने इलाके में सैयद मशहूर हो, अपने इलाके में उसको सैयद मशहूर होना चाहिए। अगर उसके सैयद होने का इत्मीनान हो रहा है आपको तो फिर उसको दे सकते हैं, क्योंकि अपने इलाके में सैयद साहब के तौर पर मशहूर है। और कहाँ से लोग जो है ना, कोई उसका डीएनए टेस्टिंग तो नहीं होती सैयद की, वो जाके पता चलाएं कि सैयद है या नहीं है। तो शोहरत इसके अंदर एक चीज शोहरत की भी होती, यानी उसको इस लिहाज से इत्मीनान होना चाहिए, सैयद के तौर पर मशहूर होना चाहिए। या मसलन दो आदिल गवाह कहते हैं कि ये सैयद है, मसलन आप किसी दो फर्द को आप आदिल समझती हैं, उनकी वो ले आया आपके पास गवाही कि उन्होंने कहा हम जानते हैं सैयद, बस आपको इत्मीनान, आमतौर पर आदिल की गवाहों से इत्मीनान भी हो जाता है। अच्छा, आदिल जब दो गवाही देते तो ख्वाब को इत्मीनान हो या ना हो आप उनकी बात मान लें, एक फायदा ये, यानी आदिल की गवाही के बाद इत्मीनान का मसला नहीं होता, जब बस वही इसमें चाहे आपको इत्मीनान नहीं भी हो तो भी आप दे सकती हैं। और तीसरी चीज ये है कि आपको खुद उसके सैयद होने का यकीन, मसलन आप के दूर दराज के खानदान वाला वो शख्स है और आपको पता है कि नहीं सैयद तो है, आपको खुद ही इत्मीनान है तो आप दे दीजिए उसको, बशर्ते और शर्तें भी पाई जाए, या उस इलाके में सैयद मशहूर हो, या दो आदिल गवाह कहते हैं, इस तरह से सैयद होने का इत्मीनान होता है। बस वो जिसका मतलब है आपको इत्मीनान नहीं ये नहीं, आप ये आप हर एक का देखा जाएगा। आमतौर पर देखें जो जाली टाइप के सैयद होते हैं उनका आमतौर पर पता चल जाता है, और अगर आपको फिर भी मशकूक हो रहे हैं कि भाई आजकल तो बहुत सारे गैर यानी ओरिजिनल सैयद नहीं होते हैं और बहुत से जाली सैयद भी आ गए हैं और कोई इस तरह से मांगने आ रहा तो आप एहतियात करें, आप नहीं दें सहमे सादात उसको, यानी वाजिब तो नहीं किसी, आप और भी तो माल से मदद कर सकती हैं। सदके के अंदर देखिए ये वाली चीज नहीं है, सदके के अंदर क्या होता है कि आप चाहे वो मुस्तहिक हो या मुस्तहिक ना हो, صدقہ دے سکتی ہیں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کو بلا دور ہو جائے گی. اچھا آپ میری طرف متوجہ رہے ہیں، آپ نے ڈسکشن شروع کر دیا. تو صدقہ آپ کسی اور مان سے مدد کر دیں، چیریٹی کی نیت سے مدد کر دیں، خیرات کی نیت سے مدد کر دیں، کوئی اور مال اپنا دے دیں. واجب والی چیز اطمینان بخش ہونی چاہیے تو آپ اس کو دے سکتی ہیں ورنہ نہیں دے سکتی. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو شیعہ سناشری ہونا چاہیے. بہت سارے افراد کو ہم نے دیکھا ہے کہ فدرے میں بھی، حمص کے اندر بھی، وہ سیلاب زدگان، زلزلہ زدگان وغیرہ کو حمص بھجوا رہے ہوتے ہیں. اثنا اشری ہونا ضروری ہے، اثنا اشری ہونا. اگر اثنا اشری نہیں ہے تو سہم سادات میں اس کا اثنا اشری ہونا ضروری ہے. یعنی کوئی غیر شیعہ خواہ وہ سید ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کو سہم سادات نہیں دیا جا سکتا. غیر سادات سید خواہ، یعنی سید کے لیے ضروری کہ وہ اثنا اشری ہو. اگر وہ سید ہے لیکن اثنا اشری نہیں، اس کو نہیں دے سکتے. عام طور پہ لوگ یہ والی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. یا مثلا بہت سارے افراد گھر کی جو میڈس اور ماسیاں یا اس طرح کے جو ملازمین ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی اس پیسے کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں، اس طرح سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے جب تک کہ اس کا سید اثنا اشری ہونا پتہ نہ چل جائے. پھر اگلی شرط یہ ہے، چوتھی شرط، کہ اس جس کو دیا جائے اس کو فقیر شرعی ہونا چاہیے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے فقیر شرعی اور ایک ہوتا ہے فقیر عرفی. فقیر عرفی تو وہ ہیں جو روڈوں وغیرہ کے اوپر آپ دیکھ رہی ہیں اور مانگتے پھر رہے ہیں، یہ عرفی فقیر ہیں، عام طور پہ لوگ ان کو فقیر کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے فقیر شرعی. فقیر شرعی وہ ہوتا ہے کہ جس، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ کھا رہا ہے، کما رہا ہے، گھر میں رہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس گاڑی بھی ہو، ہو سکتا ہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بظاہر اچھا نظر آئے، لیکن اس کے ذاتی جائز اور اخراجات جو ہیں وہ اس کی آمدنی سے زائد. کیونکہ بعض اوقات دیکھیں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی وہ اس کا اپنا خرچہ اور اس کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کا نان و نفقہ ملا کر، ابھی آ رہی ہیں چیزیں ساری، کہ جو اپنا اور اپنے وہ ڈیپینڈنٹ جو کہ اس کے زیر نگرانی، زیر کفالت ہیں، ان سب کا خرچہ وہ پورا نہیں کر پا رہا. یعنی اس کی ہو سکتا ہے کہ اس کی آمدنی، دو افراد میں آپ کے سامنے رکھوں، مثلا ایک آدمی ہے اس کی تنخواہ مثلا 50,000 روپے، دیکھا جائے تو یہاں کے کام مڈل کلاس گھرانوں کے اعتبار سے 50,000 اچھا ایک شمار ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ اس میں دو افراد ہیں، ایک سمجھنے کے پہلا فرض یہ ہے کہ اس کی اتنی آمدنی ہے لیکن 8-10 گھر کے افراد ہیں. اچھا، ان 8-10 جو گھر کے افراد ہیں ان میں ان سب کا کھانا، اتنی بڑی اس کی مثلا فیملی ہے، گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے وہ، کچن کا خرچہ بھی چلتا ہے، دوائیں اور علاج بھی اسی کے اندر ہوتا ہے، یوٹیلیٹی بلز بھی اسی کے اندر اسے پے کرنے پڑتے ہیں، بچوں کے اسکولوں کی فیسیں بھی دینی پڑتی ہیں. تو اب اس کا مثلاً خرچہ ہو رہا ہے 60,000 اور آمدنی ہو رہی ہے 50,000، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دکھاؤ تمہاری آمدنی کتنی ہو، دکھا دے گا آپ کو واؤچر لا کے اپنے سیلری کی 50,000 ہے، لیکن اس کا خرچہ مثلاً 60,000 بن رہا ہے اور ہر مہینے اس کو 5-10 ہزار ادھر ادھر سے لینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اب یہ شخص فقیر شرعی کہلائے گا، یعنی اس کے اندر کوئی وہ نہ کرے کہ زبردستی اپنے غیر ضروری اس نے خرچے بڑھائے ہوئے ہیں اور وہ اسراف کر رہا ہے اور اللہ تلّے کر رہا ہے اور مثلا فلمیں دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور اپنا خرچہ اس طرح سے، نہ وہ جائز خرچہ، یعنی ایک تو ہوتا ہے ناجائز خرچہ اور ایک ہوتا ہے جائز خرچہ، آرام سے جو وہ جس میں اپنے گھر کا جو وہ گزارا کر سکتا ہے اس سے، یعنی پورا کہستان کے بعد بھی کچھ پیسے اس کو لینے پڑ جاتے ہیں، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، تو اتنی اماؤنٹ اس کو دی جا سکتی. اچھا، اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے، مثلا وہ شوہر و بیوی دونوں رہتے ہیں، مثلا اولاد نہیں ہے یا ابھی اتنے زیادہ اس کے وہ نہیں ہے، 25,000 سیلری ملتی ہے اور 20,000 میں گزارا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں دیا جا سکتا. یعنی 50,000 والے کو دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی فیملی بڑی ہے، ڈیپینڈنٹ کا خرچہ زیادہ ہے اور اس طرح کے بہت سارے معاملات آ گئے ہیں اس کے ساتھ، تو اس کو زیادہ سیلری ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہے، خرچے زیادہ ہو رہے ہیں اس کے، جائز اخراجات، اسراف وغیرہ نہیں، اس کو دیا جا سکتا ہے. اور جس کی آمدنی اس سے آدھی بھی نہیں ہے लेकिन उसके खर्चे भी इतने नहीं है, उसके डिपेंडेंट की तादाद भी उतनी नहीं है। वो जिस इलाके के अंदर रहता है मसलन वहां पर भी ये वाला यानी इतने ज्यादा उसको खर्चों वगैरह का मसला नहीं है और उसका उसमें गुजारा हो जाता है, इसको नहीं किया जा सकता मसलन। तो ये इसमें इन चीजों को देखा जाता है आमतौर पर। अच्छा, अब फकीर उर्फी और फकीर शरई में फर्क आपको पता चल गया होगा, क्योंकि फकीर उर्फी जो ये आम रोडों पे जो मांगते फिर रहे हैं, इनको अगर आप देखें तो ये तो बड़े मालदार भी होते हैं, यानी उस लिहाज से आप देखें एक एक दिन के अंदर, यानी किसी जगह अखबार में पढ़ रहा था किसी फकीर वगैरह का इंटरव्यू कि वो आराम से 40 से 45 से 50 हजार रुपए महीना कमा लेता है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि बहरहाल और इस तरह से उनकी उतनी तादाद फकीर जो है ना वो औलाद के लिहाज से भी बढ़ाते हैं, उन्हें पता है कि हर शख्स इतना इतना कमा के लेकर आएगा। तो अच्छा, जो फकीर शरई होता है जिसके अखराजात उसकी आमदनी से ज्यादा होते हैं उसको कहते हैं। अगली शर्त यह है कि वो आपका वाजिब नफका ना हो सैयद। मसलन शौहर है, वो अपनी उसका नानो नफका उसकी बीवी का उसके शौहर के ऊपर वाजिब है। अब ये सोच रहा है कि मुझे खोंस तो निकालना ही है, बीवी में भी सैदानी है, सहमे सादात से मैं इसको दे देता हूं। नहीं, ये नहीं कर सकते, आपका वाजिब नफका नहीं होना चाहिए। आदमी सोचे कि मसलन मैं खोंस तो निकाल रहा हूं इससे अपने सैयद बच्चों की फीसें पे कर देता हूं, नहीं ये नहीं कर सकता, बच्चे आपकी उसके अंदर हैं, आपके वाजिब नफका है। अच्छा, अब यह मसलन कोई कहे कि बीवी की बीमारी पर मैं खोंस खर्च कर दूं सैदानी पर, नहीं ये नहीं कर सकता। कोई जिनके माँ बाप यानी वालिदैन का भी नानो नफका वाजिब होता है, तो वो कोई सोचे कि मैं अपना वालिदैन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका नानो नफका वो देता है, तो उनका उनको मैं सहमे सादात दे दूं, ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता एक सूरत है जिसकी मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा कि जब ऐसे अखराजात जो उन अफराद के ऊपर आ जाए जो आपकी वाजिब जिम्मेदारियों में से ना हो, उस सिलसिले में उनकी मदद की जा सकती है। बस ये जुमला इतना काफी है, लेकिन इसकी मैं तफसील में नहीं जा रहा, इसको छोड़ दीजिए ताकि बात मुकम्मल है। जिनकी समझ में आगे आ गया, नहीं समझ में आया तो जानने की जरूरत नहीं। तो अच्छा, फिर अगली शर्त उसके अंदर ये है कि एक साल के अखराजात से ज्यादा नहीं दे सकते। बहुत से लोग गलती ये कर रहे होते हैं कि मसलन अच्छी बड़ी अमाउंट उन्होंने निकाली, मसलन 20 लाख रुपए फॉर्म निकाल दिया किसी ने, कहा कि हमारे फला फला गरीब पूरा फॉर्म उसको दे दिया कि भाई इनमें शर्तें पाई जाती हैं। नहीं, एक साल के वैसे अभी था आपकी खिदमत में पेश किया मैंने कि मसलन हो सकता है कि हर महीने 5000 उसको कम पड़ जाते हो, कर्जे वर्जे लेने की जरूरत पेश आती है, तो 5000 फी महीना मसलन, तो एक साल के 60000 हो गए, तो इतनी अमाउंट उसको दी जा सकती। ये नहीं कि मसलन आपने ज्यादा निकाल दिया तो सारा उसको ले जाके दे दी, नहीं, जितना डेफिसिट उसका आ रहा है और सालाना जितना डेफिसिट बनता है जिसके लिए उसे कर्जे मांगने की और परेशान होने की जरूरत पेश आती है, फकत उतना दिया जा सकता है, वो भी एक साल के अखराजात से ज्यादा नहीं दे सकते। मसलन आप ये नहीं कर सकते कि हर साल ही जरूरत रहेगी इसको, तो ऐसा करते हैं 5 साल का एक साथ दे देते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। एक साल से ज्यादा का जो डिफरेंस आ रहा है उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता उसको। अच्छा, अब हाँ, अलबत्ता ये जरूर है इसके अंदर कि बाज अवकात ये होता है कि उसके आपने ठीक है अंदाजा करके 20,000 25,000 जितना भी डेफिसिट आता है साल के एतबार से कैलकुलेट करके उसको दे दिया, अचानक से उसके पास कोई नागहानी खर्चा आ गया, एकदम से बीमारी आ गई, एकदम से ऑपरेशन आ गया, एकदम से बच्ची की शादी आ गई, एकदम से यूटिलिटी बिल बहुत ज्यादा आ गया और बिजली काट के जा रहे हैं, और वो आकर आपसे मांग रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते भाई साल भर का दे दो जी, अब कहां तुम दोबारा मांगने आ गए। नहीं, ये जो नागहानी खर्चे इसके ऊपर आ गए हैं उसके लिहाज से ये फिर मुस्तहक जो है उस लिहाज से हो जाएगा। ठीक है, उसके पास जो अमाउंट आया है वो उस अमाउंट को खर्च कर ले सहमे सादात में जो साल भर के डिफरेंस के बराबर उसको मिला है, और उसके बाद जब वो दिया साल भर के एतबार से था, लेकिन वो पता चला कि 3-4 महीने के अंदर ही वो किसी वजह से खत्म हो गए, तो उसको फिर मजीद दिया जा सकता है। अगर कोई इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आ गई कि उसको मजीद की जरूरत पेश आ गई है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि बस आपको दे दिया तो एक साल का उसी में गुजारा आपको करना चाहिए था। नहीं, उसके साथ ये मसले पेश आ गए, वहां उसने पैसे खर्च हो गए उसके, आप ये फिर مستحق ہو گیا ہے تو اس کو لیا جا سکتا ہے ایک سال کا. اچھا اب اگلا پھر اس میں ساتواں صورتحال یہ بنتی ہے، ساتویں شرط یہ، بے نماز ہی نہیں ہونا چاہیے اس سید کو. ایک تو اس شرط کو بیان کرتے ہوئے بھی آدمی یعنی کرونا آ جائے کہ سید ہو کر آل رسول ہو کر بے نمازی، بے نمازی نہ ہو. اچھا خواہ کھلا بے نمازی ہو خواہ چھپ، آپ کو علم ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو چاہے وہ کھلا اس کا اظہار نہیں کرتا ہے لیکن آپ کو پتا چل گیا کہ بے نمازی، اس کو سہم سادات نہیں دے سکتے. ایسے افراد کو باقاعدہ بتانا چاہیے کہ دیکھو یعنی تم سادات میں سے ہو، تمہارا یہ حق تھا اور تمہیں حق تمہارا تم تک نہیں پہنچ رہا کہ تم نے اپنی ایک کمی کی وجہ سے، اتنے بڑے گناہ کی وجہ سے اپنے حق کو ختم کر دیا. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے علماء اس طریقے سے ان کو سمجھاتے بھی ہیں، لوگوں کو بھی یعنی اس لحاظ سے بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ تم نے خود سے اس سہولت کو اپنے لیے ختم کیا. بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، اور آٹھویں شرط یہ کہ اسے شرابی نہیں ہونا چاہیے، شرابی، کیونکہ سہم سادات جائے گا صرف سید کو، یہاں پہ بھی اسی کی شرط بیان ہو رہی ہے. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے تم سید ہو کے تم شراب پی رہے ہو، ایسے شخص کو بھی. اچھا یہ خواہ کھلم کھلا شراب پیے خواہ چھپ کر شراب پی، آپ کے علم میں اگر آ گیا کہ یہ شراب پیتا ہے اس کو سہم سادات نہیں دے سکتے. البتہ کھوج لگانا واجب نہیں ہے آپ پر کہ آپ کوئی سادات آیا تو آپ اس کے رشتے داروں سے پوچھتے پھر شراب وغیرہ تو نہیں پیتا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ زبردستی ان کے دماغ میں ایک چیز ڈالی جا رہی ہے کہ ہر آدمی مشکوک ہو جائے کہ اچھا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں شراب کے لیے اس کی بات مشہور ہوئی ہے تو اور لوگ بلا. نہیں آپ کو یہ چیز پوچھنی ہے، آپ کے خود علم میں ہو کہ چھپ کر شراب پیتا ہے یا کسی اور ذریعے سے آپ تک اطلاع پہنچ جائے تو اس کو سہم سادات نہیں دے سکتے. لیکن اس کی تحقیق لوگوں سے کرتے پھرنا ضروری نہیں ہے شکی شرابی ہے یعنی. پھر اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے، نویں شرط، کہ اس کو فاجر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ایک ہوتا ہے فاسق، فاسق گناہگار ہوتا ہے لیکن اپنے گناہ کو دوسروں کو بتاتا نہیں، چھپاتا ہے، شرماتا ہے، وہ فاسق ہے. فاجر نہیں ہونا چاہیے، فاجر وہ ہے کہ جو اپنے گناہ کو علل اعلان ظاہر کرے، علل اعلان. مثلا اگر کوئی شخص داڑھی کو مونتا ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی ایک تھوڑا سا ایک فقہی ایک بحث ہے لیکن میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں، داڑھی مون رہا ہے، آپ کو پتہ ہے داڑھی موننا تقریباً سارے مجتہدین کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے مردوں کے لیے داڑھی موننا. اب وہ خود ہی اس نے داڑھی مون کر علل اعلان سوائے کہ کوئی عقلی، طبی یا شرعی مجبوری نہ ہو. مثلا طبی مجبوری بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جناب خارش کا کوئی مرض ہے، ویسے میں نے آج تک کوئی دیکھا نہیں ہے لیکن لوگ عام طور پہ کہتے ہیں، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ جس میں داڑھی رکھنے سے اس کو مثلا پسینہ آتا ہے، وہاں پہ کوئی اور فنگل انفیکشن ہونے لگتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کوئی مرض اس کو لاحق ہو جاتا ہے. چلیں بالفرض کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، اگر اس کی شرعی مجبوری کی وجہ سے داڑھی مون رہا ہے تو اسے دے سکتے ہیں، کوئی طبی مجبوری کی وجہ سے داڑھی مون رہا ہے اسے دے سکتے ہیں، کوئی اور ایسی مجبوری ہے کہ بہت اس کا بہت زیادہ معاشرے کے اندر کوئی تقیے کے اندر ہے، مثلا داڑھی نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی ایسی وجوہات کی جس کے پاس کوئی عذر موجود ہو، اگر عذر موجود ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں. لیکن زیادہ تر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایسی بس فیشن کے طور پر داڑھی کو مونڈ رہا ہے اور نہیں وہ اس نے رکھا تو اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا، کھلا گناہ اپنے ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح سے کوئی عورت اگر بے پردہ ہے، بے پردہ عورت کو بھی سہم سادات نہیں دیا جا سکتا، تو اس کو بھی کیونکہ اس نے اپنے گناہ کو خود ہی الگ اعلان ظاہر کر دیا، تو اس لحاظ سے اس کی ضرورت ہے. اچھا وہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی عورت آپ کو یہ آ جائے کہ بھئی آج کل وائٹامن ڈی وغیرہ کی بڑی کمی ہو جاتی ہے اور سن لائٹ وغیرہ نہیں پڑتی ہے اور کوئی نہ کوئی عذر لے آئیں کہ میں اس وجہ سے پردہ نہیں کرتی ہوں، کوئی بات نہیں، اب اس کے انجیکشن آتے ہیں اور دوائیں آتی ہیں، اس سے اپنی کمی کو پورا کر لیجیے. اور اسی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے بال اور وہی کھلنے ضروری ہیں، آپ اسکارف پہنیں اور پورے دن دھوپ پہ کھڑے رہ کے جب وائٹامن ڈی لیتے رہیں، तो उनको ये चीजें भी बताई जा सकती है। तो इस तरह के लोगों ने बहुत से उजूर ईजाद कर ली कि भाई हमारे पास तो तिब्बी उजूर है, हमारे हमने वाइटामिन डी करवाया था, लेवल्स कम आए थे, डॉक्टर ने भी कहा कि सब हिजाब हिजाब करने से ये मसाइल हो जाते हैं, तो इस वजह से हमने उतारा। वो नहीं, ये नहीं चलेगा। अच्छा, अब इसको भी फाजिर की उसके अंदर जुमरे में आ जाएगी, उसको खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला नहीं होना चाहिए फाजिर जिसको कहा जाता। दसवीं शर्त यह है कि वो सैयद इस खुमस को हराम कामों में खर्च ना करे। मसलन खुद आपसे कोई मसलन कह रहा हो कि भाई अभी मैं तो बहुत हो गया हूं, अब जाकर जैसे मुझे पैसे मिलेंगे मसलन मैं हेरोइन खरीद के पीऊंगा। अभी क्या है कि आपको पता है कि हराम में खर्च करने के लिए जा रहा है। बहुत से लोगों ने खुमस को पैसों से क्रिकेट मैच तक करवाए। तो इस किस्म के अफराद जो हैं उनको इसमें शुमार नहीं होता। तो जो भी सैयद हो वो खुमस को अगर किसी गुनाह के कामों में इस्तेमाल करेगा तो उसे खुमस नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसे खुमस देने से गुनाह करने में मदद मिलती हो तो भी उलमा फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब है कि उसे खुमस ना दिया जाए, चाहे वो उसे गुनाह में इस्तेमाल ना भी करे। गुनाह में मदद मिल रही है उसको, उसके अंदर ताकत आ रही है, उसके बाद मसलन जा रहा है किसी को कतल करने के लिए, वो उस खुमस को इस्तेमाल करके वगैरह, तो बहरहाल चाहे वो, एक तो ये कि खुमस को गुनाह के कामों में इस्तेमाल ना करे बल्कि उसे गुनाह में मदद मिल रही हो तो भी एहतियात वाजिब है कि उसे खुमस ना दिया जाए, खा वो गुनाह के काम में इस्तेमाल ना भी करे उसको, लेकिन उसे मदद भी मिलनी नहीं चाहिए। और उसके बाद अगली शर्त ये है कि 11वीं शर्त के खुमस मिलने से उसे किसी हराम काम में मदद ना मिले। मसलन पता है कि बहुत सारे आज मैंने केस अपनी आंखों से भी देखा है कि लोग कर्जे ले रहे होते हैं शादी ब्याह के खराजात के लिए और खुमस ले रहे होते हैं, फिर उसके बाद ऐसी मेहंदियों के प्रोग्राम जो गाने बजाने के में उन्होंने खर्च किए हों उस पैसे को, और आपको पता है कि खुमस मिलने से ये इस हराम काम में मदद मिलेगी, वैरायटी प्रोग्राम कराएगा मसलन, वो खुद कह भी रहे हैं कि बस ये देखिए ये सब चीजें होनी जरूरी हैं और मैं इस काम के लिए मुझे कुछ रकम चाहिए और कहीं से कोई खुमस वगैरह मिल जाए। नहीं, हराम काम में मदद नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे को नहीं दिया जा सकता खुमस। यानी मुस्तहिक खुमस के लिए आदिल होना जरूरी नहीं है कि उसे एक भी गुनाह ना करे और एक भी वाजिब उससे तर्क ना हो, लेकिन उनको इन तमाम चीजों का ख्याल करना पड़ेगा, उसके बावजूद इन शराइत की पाबंदी करना पड़ेगी। खास तौर पर इसमें आखिरी पांच शर्तें उलमा वो फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर उनकी पाबंदी भी जरूरी है। यानी ये जो 11 शर्तें हैं, यानी आपको तौजीह मसाइल में भी मिलेगा कि मुस्तहिक खुमस के लिए आदिल होना जरूरी नहीं है, यानी कि वो तमाम वाजिबात पूरा करता हो और तमाम हराम कामों से अपने आप को बचाता हो, लेकिन इन 11 शर्तों की पाबंदी उसको करना जरूरी है। ये अगर आपके ख्याल में ये शर्तें उसके अंदर पूरी हो रही हैं तो फिर आप उसको खुमस दे सकती हैं, ये शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं खुमस नहीं दे सकती, या शक हो रहा है आपको तो भी इस सिलसिले में आप एहतियात कर लें, और जब तक इत्मीनान ना हो तमाम शराइत का तब तक उसको खुमस ना दें। फिर उसके बाद अब यही वाला मसला जो आपके सामने है कि क्या खुमस की किस्तें करवाई जा सकती हैं या मोहलत ली जा सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो एक साथ नहीं दे पाते, खुमस ज्यादा वाजिब हो गया, अब ख्याल आ रहा है तो अब उतनी हैसियत नहीं रही है उनकी, या मसलन हैसियत है लेकिन फिर हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी, अभी बड़ी मुश्किल से हो रहा है गुजारा, एकदम से खुमस ज्यादा अमाउंट में निकल जाएगा तो बैलेंस आउट हो जाएगा, महीने के खराजात में जरा मुश्किल पेश आ जाएगी। या खवातीन है मसलन, वैसे अभी आगे चलकर उनका अभी आगे चलकर भी आने वाला है, अभी वहीं तक रखें, तो बहरहाल यानी किसी के पास फिलहाल खुमस की अदायगी की उतनी रकम मौजूद नहीं है उसके पास, तो वो क्या करे, वो ये नहीं कहे कि भाई अब तो है ही नहीं मेरे पास तो मैं क्या करूं, नहीं, फिर वो ये करे कि मुज्तहिद या उसके वकील से रुजू करे और उससे या तो आसान किस्तें करवा ले। मसलन किसी को मसलन 10,000 रुपए बिल पर, तो वो कह दे कि भाई मुझे आप आसान किस्तें कर दें, 1,000 रुपए महीना करके मैं आपको अदा कर दूंगा, तो आपको भी बर्डन नहीं होगा और उसका एक फायदा है। फायदा ये है कि उस माल को इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी। अगर आप घर के अंदर वैसी बैठी रही और कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तो मैं खुमस अदा कर दूंगी, तो वो अमाउंट जिसके ऊपर खुमस वाजिब है या वो चीज जिस पर खुमस वाजिब है उसका इस्तेमाल करना हराम हो जाता है। इसका फायदा ये होगा, या तो मुज्तहिद से जाकर मोहलत ले लें, दोनों चीजें मुमकिन होती हैं। आप कहेंगे मैं 6 महीने बाद ही आपको पैसे अदा कर दूंगी, 6 महीने तक कुछ नहीं दूंगी, मुज्तहिद या उसका वकील इजाजत दे दे तो फिर वो चीज इस्तेमाल आप कर सकेंगे। और आपके लिए जायज हो जाएगा इस्तेमाल करना। या आप ये भी कर सकती हैं, आप कहें कि मैं किस्तवार दे दूंगी, या तो मोहलत ले लें या किस्तवार करवा लें उसको, तो कुम्स की किस्तें भी करवाई जा सकती हैं और उसका फायदा ये हो जाएगा कि उस चीज का इस्तेमाल जायज हो जाएगा, गुना आपके जिम्मे से हट जाएगा। वरना हक़े सादात और अहले बैत वो आपकी गर्दन के ऊपर रहेगा, आप मकरूज रहेंगी, उसमें एक बेबरकती रहेगी, मुसलसल गुना रहेगा जब तक कि अदा ना हो जाए, इससे कम से कम उन नुकसान से बच जाते हैं। अच्छा, अब आ जाइए कि एक मसला इसमें यह भी होता है कि क्या जिस वकील से हम किस्तें करवाएं या मोहलत लें, क्या वाजिब है कि उसी वकील को जाकर हम किस्तें दें, या आइंदा जो 6 महीने बाद पसंद हमें कौन देना है उसी के पास जाएं। आमतौर पर शोहरत यही है लोगों में, जो कि गलतफहमी है, कि जिससे हम किस्तें करवाएं उसी को ही किस्तें ले जाकर देनी जरूरी है, किसी और वकील को ले जाकर नहीं दे सकते, यानी उसी मुज्तहिद के किसी और वकील को। तो ये गलतफहमी है कि नहीं, आप ये भी कर सकती हैं किस्तें किसी और से करवाएं और उसके बाद मसलन आपका इरादा कैंसिल हो गया, आप दूसरे शहर में चली गई, तो वो जो उसने इजाजत दी हुई थी किस्तें करने की, वो आप किसी और मुज्तहिद के वकील तक भी पहुंचा सकती हैं। या वो जो मोहलत है उसका इस्तेमाल करने के बाद 6 महीने बाद, साल के बाद, जो भी आपने उससे तारीख तय की थी, वो किसी और वकील तक भी पहुंचा सकती है। ये एक मसला इसमें होता है कि आमतौर पर शोहरत ये है कि जिसके पास किस्तें करवाएं उसी को जाकर देना जरूरी है, ऐसा नहीं। अच्छा, अब आ जाइए, मसला ये है कि जिस वकील को भी खमोश दें आप, उससे रसीद लेना जरूरी है, रसीद लेना जरूरी। अब वो चाहे वो कोई इदारा हो या वो कोई शख्सियत, रसीद लें उससे। अच्छा, रसीद लेना लोग अक्सर कहते हैं कि भाई रसीद कोई शरई हुक्म तो नहीं है, बस खमोश पहुंचा देना, आपको इत्मीनान होना चाहिए। ये एक हद तक बात सही है, लेकिन मुज्तहिदीन ने सिलसिले में एक इंतजामी हुक्म जारी कर रखा है और शायद कुछ बेअतदालियां सिलसिले में हों, बहुत सारे आपको पता है आजकल का जमाना इस किस्म का आ गया है, जाली अपराध, जाली वकील, इस तरह की भी अपराध होते हैं जिन लोग आमतौर पर तहसीस नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से रसीद का सिस्टम ओलामा ने जारी किया है, रसीद लेना जरूरी है। और बाकायदा पाकिस्तानी ने इस सिलसिले में फतावे वगैरह भी दिए हैं और लोगों ने सवाल उनसे यही पूछा है कि बहुत सारे अपराध ऐसे हैं उनके पास इजाजतनामा होता है, मसलन कोई इदारा चला रहे हैं, कोई मदरसा चला रहे हैं, कोई और कोई इस तरीके का कोई इमाम बारगाह चला रहे हैं, तामीर हो रही है किसी भी ऐसे इदारे की, तो वो मोमिनीन से पैसा लेते हैं और यानी उनके पास इजाजतनामा भी होता है, लेकिन वो आपके कौम मशहद या तेहरान के दफातर की जो रसीदें या मसलन नजफ का जो दफ्तर है उसकी रसीद नहीं मुहैया करते, अपने पास से हो सकता है दे देते हों। तो पाकिस्तानी ने ये कहा कि रसीद को हासिल किए बगैर शरई वजूहात के मालिकीन की बरी उज़िम्मा होने की हम जमानत नहीं ले सकते, यानी इसका मतलब है कि उनका जिम्मा उस वक्त तक बरकरार रहेगा और उनका खमोश अदा नहीं होगा, यानी रसीद लेना जरूरी। और अगर कोई रसीद नहीं दे तो फिर आप उससे यानी ये समझा जाएगा कि जैसे खमोश आपका अदा नहीं हुआ। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि बाकायदा सिलसिले में बहुत सिर्फ पाकिस्तानी का नजर ही नहीं, तकरीबन सभी इस मुज्तहिदीन अब इसके कायल हैं कि जितने भी उलमा और मराजी हैं सब ने तकरीबन ये बात कही है कि नहीं, ये काफी नहीं है और रसीद लेना जरूरी है। अच्छा, इसमें इब्तदाई तौर पर वो अपने पास से रसीद देगा और उसके बाद वो नजफ या कौम या मशहद या तेहरान या जो मुज्तहिदीन की ओरिजिनल जो ऑफिस हैं वहां से आपके मुकम्मल अमाउंट की रसीद आपको लाकर दे, तब वो आपका खमोश शुमार होगा। और उलमा ने कहा चाहे वो उसके बाद, ये भी है कि चाहे वो असल रसीद कुछ दिन के बाद जाए, फौरन तो नहीं होगा उस तक पैसा पहुंचाया जाएगा, फिर कोई काबिल एतबार आदमी वहां से रसीद लेकर आएगा, काफी इसके अंदर वक्त लग जाता है, कुछ महीने भी लग जाते हैं, तो वो शख्स या इदारा जिसके पास वो वकालतनामा होने का आपको इत्मीनान है वो एक इब्तदाई रसीद अपने पास से जारी करे आपको, या कम से कम आप ले लें उसको, और उसके बाद असल रसीद आपको मुहैया करे मुज्तहिद के ऑफिस की, तो फिर वो आपका खमोश अदा होगा। और उससे आप नहीं अगर वो दे रहा है तो आप बार बार तकाजा करें जाकर, बल्कि खमोश देते वक्त उससे पूछें कि ओरिजिनल रसीद कब आएगी, तो वो अगर नहीं दे रहा है तो फिर आप उसको खमोश नहीं दें, वरना खमोश बरी उज़िमा आप नहीं हो सकेंगी और शायद खमोश दोबारा निकालना पड़े। तो इसके अंदर काफी मसले मसाइल हैं, तो इसमें इसका ख्याल रखा जाए। अच्छा, अब अब ये सवाल कि अगर कोई शख्स है इदारा रसीद ना दे, तो ये बात याद रख लीजिए वो फकत उसका जाती रसीद देना काफी नहीं। बहुत से लोगों ने होते हैं ना बहुत अच्छी सी एक रसीद बनाई हुई होती है अपनी जाती, बड़ी अच्छी प्रिंटेड और उसके ऊपर मोहर वोर भी लगी हुई होती है, लेकिन वो काफी नहीं उनकी अपनी। चाहे वो बहुत से लोगों ने फारसी और अरबी के अंदर जो है उस तरह की रसीद बनाई हुई है, वो अपने पास से ऐसी लगता है कि जैसे ये लग रहा होता है कि वकील मसलन आयतुल सिस्तानी में बहुत अच्छा सा उनका नाम, लेकिन वो उनकी अपनी जाती रसीद है। चाहे वो कितनी अच्छी वन बने, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत इंप्रेसिव हो, लग रहा हो कि हाँ वाकई उनका वकील है, लेकिन आप जब तक वो असल ऑफिस की आवाज सिस्तानी के रसीद नहीं देगा तब तक वो हुकूमत शुमार नहीं हो। इसमें बहुत सख्ती की जाती है आजकल, और अगर किसी ने इस तरह से रसीद नहीं दे रहा है तो बड़ा मसला हो जाएगा और फोर्स दोबारा भी निकालना पड़ सकता है, या कम से कम मुस्तहिक के पास जाकर बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई ये हमने इस तरह से फोर्स दे दिया है। एक मसला ये आता है कि सैयद फोर्स की वसूली के बाद उसे किसी गैर सैयद के ऊपर सर्च कर सकता है, मसला उसकी बीवी गैर सैदानी है, गैर सैयद है, उसने लिया है सहमे सादात क्योंकि शोहर मसल मुस्तहिक हो रहा था। अब वो इस सहमे सादात को अपनी बीवी के ऊपर सर्च कर रहे हैं जो कि सादात नहीं, तो यहां पर भी देखिए उससे मसला हल होता है। जो उन्होंने पहले कहा कि वो उसका मालिक बन जाता है, अब ये सहमे सादात नहीं रहा, ये शख्स का जाती माल बन गया। अब वो जाती माल वो अपनी चाहे वो सैदानी के ऊपर लगाए, किसी सैयद पे लगाए, किसी गैर सैयद पे लगाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से कहा जाता है ना कि जो गैर सैयद होते हैं सैयद होते हैं वो गैर सैयद का वाजिब सदका नहीं ले सकते, मसलन फितरा नहीं ले सकते, मसलन जकात नहीं ले सकते, वाजिब सदकात मुस्तहब सदकात तो ले सकते हैं सिवाय सदका तौहीन वगैरह के, वो एक अलग बहस है, लेकिन वाजिब सदकात तो नहीं ले सकते गैर सैयद के जिसमें जकात आ जाती है और फितरा आ जाता है। तो बहुत से लोग एक चीज लेकर आते हैं कि भाई सैदानी अगर किसी गैर सैयद से शादी करेगी तो वो जो गैर सैयद है वो तो जकात को और फितरा भी वसूल करने का उसको इख्तियार होता है, लेकिन वो सैदानी के ऊपर हराम होता है, तो वो वसूल करने के बाद अपनी सैयद बीवी पे खर्च करेगा जिसका उसको सैयद बीवी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो इसके लिहाज से ये दलील दी जाती है कि नहीं ये सैदानी की गैर सैयद से शादी जायज नहीं। ये बिल्कुल गलत दलील है, इस पर हम पूरी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, यहाँ पर आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, 2.5 घंटे का कम से कम इसके ऊपर एक दर्स मौजूद है कि ये वाली बात बिल्कुल गलत है। यानी वो जो गैर सैयद है जिसने सैदानी से शादी की हुई है, जब वो किसी भी सदका फितरा को या ज़कात को जो है वो अगर हासिल कर लेता है तो उसका अपना जाती माल बन गया है। अब वो जाती माल बनने के बाद फिर वो ये नहीं होगा कि ये वो फला वाला पैसा है, नहीं, ये इसका जाती माल बन गया, जाती माल बनने के बाद ये अपनी जो सैयद बीवी है उसके ऊपर भी खर्च कर सकता है, तो इससे वो वाला मसला नहीं पेश आता कि ये औरत हराम खाएगी वरना नहीं। इसी तरीके से जो सैयद है ये फोन्स को रिसीव करने के बाद सहमे सादात के बाद अपनी गैर सादात बीवी पर भी खर्च कर सकता है, वहां से भी ये वाला मसला निकलता है। तो नतीजा ये हुआ कि सैयद फोन्स वसूल करने के बाद उसे गैर सादात अफराद पर भी खर्च कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसे सैयद ही पर खर्च करें। अच्छा, अब एक इसमें एक मसला ये होता आता है कि क्या अपने शहर या इलाके के लोगों ही को सहमे सादात दिया जा सकता है जैसे कि फितरे में होता है। देखिए फितरे के अंदर की शर्त यह है कि उस जिसको भी आप फितरा दें, यानी फितरा शहर से बाहर ना जाए। हाँ, अगर शहर में कोई मुस्तहिक ना हो या कोई मजबूरी हो, कुछ उसके अलग अहकाम है, तो उस सूरत में फितरे को शहर से बाहर भेज सकते हैं, लेकिन होमस में ऐसा कुछ नहीं। आपके अपने इलाके में, अपने रिश्तेदारों में, अपने शहर के अंदर भी अगर कोई मुस्तहिक मौजूद है तब भी होमस को बाहर भेजा जा सकता है, यानी सहमत आदात को आप दूसरे शहर भेज सकते हैं, यानी। लेकिन बेहतर यही है, उलमा इसमें बहरहाल ये फरमाते हैं कि बेहतर यही है इसके अंदर कि वो खासतौर पर वो रिश्तेदार आपके, बशर्ते कि वो आपके वाजिब नफका ना हो। बहुत से इस तरह के रिश्तेदार होते हैं जिनका नानो नफका हम पर वाजिब नहीं, लेकिन वो मसलन गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और दीगर शरायत सब रखते हैं, तो उनको वो थोड़ी फौकियत रखते हैं दीगर अफराद के ऊपर। तो इसी तरीके से अगर हर शख्स अपने अपने खान, अच्छा इसमें फायदा ये भी होता है कि आपके करीबी रिश्तेदार, अजीज अकारीब रिश्तेदार, अपने शहर वाले, उनकी उनके साम आपके सामने उनकी पूरी पिक्चर होती है, उनके अंदर शराइत का ढूंढना और तहकीक करना आसान होता है, या आपको पहले से सब बातें पता होती हैं तो आप उनको इत्मीनान के साथ दे सकते हैं। तो जाहिर है बेहतर है कि किस अगर करीबी रिश्तेदार और अजीज अकारीब या मोहल्लेदारों वगैरह में से कोई और उनमें शर्तें पाई जा रहे हैं जा रही हो, तो फिर बेहतर है कि बाहर किसी दूसरे शहर ना भेजें, उन्हीं के ऊपर खर्च कर। लेकिन फिर भी अगर भेजना चाहें तो कोई गुनाह नहीं और फितरे जैसा मामला इसके अंदर नहीं है। अच्छा, एक मसला ये भी पेश आता है कि बाहर ममालिक से भी अक्सर लोग फोम्स भेजते हैं, मतलब वहां उन्होंने डॉलर्स में फोम्स निकाला, जो पाकिस्तान में जब अगर वो मिल रहा है तो वो करेंसी एक्सचेंज का एक डिफरेंस होता है, कुछ अमाउंट कम हो जाती है, कुछ बैंक काट लेता है। तो इस काम के लिए जो एक तो करेंसी के एक्सचेंज के लिए मुश्तहिद या उसके वकील की इजाजत होनी चाहिए, या ये कि वो जो डिफरेंस हो के कम होकर भी जो मिल रहा है या तो इजाजत हो या फिर एक उसको कंपनसेट किया जाए, यानी वो जो बैंक डिडक्शन होगी, बैंक अपने चार्जेस लेगा, हो सकता है वो किसी मनी चेंजर के थ्रू भिजवा रहे हो, वो अपने चार्जेस ले रहा हो, फिर यहाँ से बैंक से जो आदमी ड्रॉ कर रहा होता है उसकी भी कुछ अमाउंट कट रही होती है, उसको तो कुछ नहीं, उसे तो निकाल के और मसलन वकील को या उस तक पहुंचाना है, तो ये फोन्स कम होता जा रहा है, तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। मुश्तहिद या उसके वकील से बाकायदा बातचीत करें, एक तो करेंसी की एक्सचेंज की, और ये जो डिफरेंसेस इसके अंदर आ रहे होते हैं करेंसी के, उसमें भी इसको देखना पड़ेगा और इजाजत लेनी है, या ये कि इजाफी रकम भिजवाएं ताकि ये अपराध कट कट आके और फाइनल जब तक ड्रॉ हो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि इस फॉर्म उसको उतनी ही अमाउंट पहुंचाएं जितना आप पर वाजिब हुआ है। अब आपने इतने दसियों जराए बीच में अख्तियार कर रखे हैं, बैंक भी काट रहा है और मनी चेंजर भी फला कर रहा है और जिसके थ्रू भिजवा रहे हैं वो भी ले रहा है और जो ड्रॉ कर रहा है उसके भी पैसे कट रहे हैं और फिर कम होके कुछ रकम जा रही है, तो उतना जिम्मा फिर अदा नहीं होगा आपका। तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए इसमें इकदाम करना चाहिए। फिर उसके बाद है कि क्या होमस की किस्तें करवाई जा सकती हैं या मोहलत ली जा सकती है? तो अच्छा, हाँ एक बात और बता दूं, अभी वैसे कुछ दिन बाद वो मसला अपनी जगह पर आ जाएगा, अगर रमजान रमजान शुरू होगा उसके अख्तितम पर फितरे का मसला होगा, तो बहुत से लोग जो बाहर ममालिक में रहते हैं वो फितरा भी इसी तरह से भिजवाते हैं, तो फितरे के अंदर भी आपको पता है कि नोटों की तब्दीली का एक मसला होता है कि नोट को तब्दील नहीं कर सकते, और या ये कि करेंसी भी तब्दील हो रही है उसके अंदर, तो यहाँ तक कि यहाँ पर तो ये कि वही नोट रखे हुए हैं, उसी नोट जो आपने फितरे के तौर पर निकाल के अलग किए हैं वही वाले नोट फितरे में देने होते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आपने खुला करके और उसमें से ईदियां भी बांटनी शुरू कर दी उसकी जगह कोई बंधा हुआ नोट वहां पर रख दिया, नहीं मतलब ये नहीं कर सकते जब तक मुश्तहिद की इजाजत ना हो या मतलब जिसको फितरा जा रहा है उसकी इजाजत ना हो उसके अंदर, तो वहां से तो इतनी आप पूरी अमाउंट ही जो है वो तब्दील हो रही है, करेंसी चेंज हो रही है, तो उसके अंदर भी यही वाला मसला रहेगा कि मुश्तहिद या उसके वकील की इजाजत से हो। फिर उसके बाद एक मसला ये आता है कि मुख्तलिफ रिफाही इदारे जो हैं जो फलाही काम कर रहे होते हैं क्या उनको खोमोस दे सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि पहले आप ये तहसीस करें कि उनके पास खोमोस लेने का इजाजतनामा मुश्तहिद का मौजूद है या नहीं, यानी आपके मुश्तहिद का। अगर वो कहें कि हाँ मौजूद है, तो फिर दूसरी बात ये आप उनसे कंफर्म करके पूछें कि वो आपको मुश्तहिद के ऑफिस की असल रसीद लाकर देंगे या नहीं। अगर वो ऑफिस की असल रसीद लाकर देने के पाबंदी को कबूल कर रहे हैं और कहेंगे कि हम आपको मुकम्मल अमाउंट की आपकी वहां की रसीद लाकर देंगे, तो फिर आप उनको दे सकती हैं और फिर गाहे बगाहे परसू करती रहें यहां तक कि वो आपको रसीद मिल जाए। अच्छा, लेकिन रफाही और फलाही इदारों के अंदर बाद ये देखने में आता है कि वो इतना ज्यादा एहतियात से काम नहीं ले रहे होते। देखने में आता है कि मसलन सैम फोमस को भी वसूल कर रहे हैं और हर तरह के अपराध के ऊपर वो जो है वो खर्च हो रहा है, फितरा वसूल कर रहे हैं, और मसलन उस फितरे की रकम जो है आपको पता है कि फितरा भी जो है वो शिया अपना शरी को दिया जाता है, लेकिन वो मसलन सैलाब जदगान के कहीं कैंप लगे हुए हैं, आपका सारा फितरा वहां पे पहुंचा रहे होते हैं, जलजला जदगान जिसके अंदर इस किस्म की तो कोई तफ्तीश नहीं होती, कैंप लगा हुआ है, हर तरह के लोग हैं उसमें, हो सकता है मोमिनिन भी हो सकता है कि ना कुछ शर्तों की पाबंदी है ना कुछ है, तो ये बहुत सारी चीजें इस तरह का है कि जब तक आपको इत्मीनान ना हो, एक तो इत्मीनान यही वाला है कि वो उनके पास इजाजतनामा भी है या नहीं, और दूसरा इत्मीनान ये होना चाहिए कि वो शराइत के मुताबिक उसको आप तकसीम भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो आम तौर पर आपको मुकम्मल इत्मीनान के बाद ही देखने में आता है कि वैध दालियां जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो मुज्तहिद के वकील के पास ही देना वो ज्यादा बेहतर महसूस होता है, सिवाय इसके कि आपको बिल्कुल इदारे को अगर यकीन और इत्मीनान हो तो फिर मसला नहीं है, फिर दिया जा सकता है। इसी तरह से अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम मस्जिद में इमाम बारगाह वगैरह की जो तामीर होती है उसमें हम पोमोस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। देखिए, एक तो बड़ा मसला ये है कि मस्जिद हो या इमाम बारगाह, इसके लिए बाकायदा कुछ उलमा ने एक टर्म भी इजाद की हुई है और इसको इतना पसंदीदा शुमार नहीं किया और महाराजे भी इसको पसंद नहीं करते, होमस डिपेंडेंसी सिंड्रोम। यानी इदारे, मसाजिद, इमाम बारगाहें, ये भी सिर्फ और सिर्फ यानी लोग अपने जाती हलाल माल को इनके ऊपर खर्च नहीं कर रहे, बल्कि जो वाजिबात हैं उसी में से कोशिश ये होती है कि हमें एक्स्ट्रा पैसा ना खर्च करना पड़े, ये तो वाजिब है निकालना ही है, तो ये इससे इदारों को मस्जिद को बनाया जाए इसी से ही, जो यानी इमाम का जो पैसा है, क्योंकि खुमस निकला हुआ रकम असलन वो आपकी रकम नहीं होती, वो तो इमाम की होती है, उनको आपने दे दिया तो आप कह रहे हैं कि मौला ये जो हमें जो वाजिबात है इन्हीं से आप मस्जिद इमाम बारगाह वगैरह के इदारे की तामीर कर लें और हम अपना जाती पैसा इसके अलावा नहीं देंगे, तो वाजिब था आपको वैसे ही निकालना था। तो उलमा और महाराजे मुज्तहिदीन इस बात को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं लोग इन चीजों के लिए मसाजिद की तामीर, इमाम बारगाहों की तामीर और मसलन मदारिस की तामीर और इस तरह के जो रिफा, इसमें मोमिनीन खुद से आए अपने हलाल माल को खर्च करें, अपने वसत के अंदर जो उनका अपना ज्यादा फायदा होगा इसमें इस तरह से पैसे लगाएं, बनिस्बत इसके कि आप सादात का और गरीब अफराद का और जो मुज्तहिद है वो जो तबलीगात का जो पैसा है वो आप यानी अपने जो वाजिबात वाली चीज है वो आप दे रहे हैं खाली, इसके अलावा मुस्तहब की तरफ आप नहीं जा रहे। यानी खुद एक आलिम बयान करते हैं कि उनके सामने आकाश इस्तानी के सामने इस तरह का केस आया था और वो किसी इलाके में मस्जिद की तामीर के लिए खुमस की इजाजत मांग रहे थे, तो आकाश इस्तानी नहीं दे रहे थे और उसके बाद जब उन्होंने बहुत इसरार किया और बहुत अपने हालात बताए और कोई देने वाला नहीं है और इलाका बहुत ज्यादा गरीब है, तो बहुत सारी शर्तें उन्होंने वहां रखी कि उस मस्जिद से मसलन अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम होगा और ये काम होगा वो काम होगा, इन सब शर्तों की पाबंदी करोगे तो फिर मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, वरना इजाजत नहीं। वरना मोमिनीन से कहो कि वो चंदे जमा करें, आपस में अपने हलाल माल को खर्च करें और उससे इन चीजों की तामीर करें। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज होती है, आजकल एक सवाल और भी जिंदा इसमें आ गया, लोग कहते हैं कि हम अपने जो सदका निकालते हैं ये मस्जिद वगैरह में दे सकते हैं, मसलन मस्जिद के रनिंग एक्सपेंसेस हैं, बिजली का बिल है, फला चीज है, तो हम जो सदका निकालते हैं बजाय कि हम किसी गरीब को दें, तो देखिए जो गरीब वरीब वगैरह वाला जो सदका होता है ना जो निकाला जाता है वो गरीब ही के पास जाना चाहिए, उस सदके को आप मस्जिद की तामीर वगैरह के अंदर खर्च नहीं कर सकते। मस्जिद की तामीर, इमाम बारगाह की तामीर, ये अलग से नियत करें आप कि मैं तामीर मस्जिद के लिए, तामीर इमाम बारगाह के लिए दे रहा हूँ, लेकिन गरीब के लिए, रफे वाला के लिए जो आप सदका निकालती हैं वो मस्जिद या इमाम बारगाह वगैरह की तामीर में ना दें, वो यानी फिजिकली किसी गरीब ही के पास जाना चाहिए। तो मस्जिदों में और इमाम बारगाहों की तामीर वाला एक मसला इसमें होता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक मसला पेश आता है ना कि सहमे सादात तो गरीब सादात का हक है, वो भी आगे चलकर आएगा, क्या सहमे इमाम में से हम किसी गरीब को दे सकते हैं? तो देखिए, सहमे इमाम तो जाहिर है मुज्तहिद के वकील को जाएगा, लेकिन सहमे इमाम में से, अच्छा सहमे इमाम में शर्त नहीं होती कि वो गरीब सैयद हो या गैर सैयद हो या कुछ भी हो, तो वो मुज्तहिद की तरफ से अगर किसी वकील को, वकील जुजी और मुज्तहिद की तरफ से उसको इजाजत मिली हुई है तो सहमे इमाम किसी भी गरीब को दिया जा सकता है, चाहे वो सैयद हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सहमे सादात से सादात को जाएगा, लेकिन सहमे इमाम के अंदर ये वाली शर्त नहीं है और किसी भी गरीब को वो दिया जा सकता है, बशर्त है कि मुज्तहिद की इजाजत हो या उसके बा इख्तियार वकील की इजाजत हो, तब ऐसा हो सकता है। मसलन बाज़ औक़ात होता है ना कि कोई बड़ा केस आ गया, कोई बहुत बड़ी बीमारी का केस आ गया और मसलन वो शख्स सैयद नहीं है, सहमे सहमे सादात भी नहीं दे सकते उसको, तो किसी ऐसे वकील से बात करके सहमे इमाम में से जिसके पास इस बात की अथॉरिटी हो या वो कम से कम मुज्तहिद से इजाजत ले ले फोन करके या किसी भी और जरिए से, तो वो सहमे इमाम भी किसी भी गरीब को दिया जा सकता है, और सैयदों गैर सैयद की इसमें कोई कैद नहीं है। अब इसमें एक चीज और भी आती है, क्या सहमे सादात से किसी की स्कूल फीस, कॉलेज फीस या यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सकते हैं? तो जवाब तो ये है कि नहीं। अगर वो शख्स कमाने पर कादिर ना हो और उस इल्म का हासिल करना वाजिब ऐनी हो उसके ऊपर, और अगर वो उस इल्म को हासिल करने जाए तो वो कमाने से माजूर है, इस सूरत में उसको सहमे सादात दे सकते हैं। या दूसरे अल्फाज में, आसान जबान में कहूं कि सहमे सादात किसी सैयद को सिर्फ बुनियादी तालीम के लिए दे सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए नहीं दे सकते। मतलब अगर कोई शख्स शख्स पढ़े नहीं, ना मैट्रिक कर पा रहा है ना इंटर कर पा रहा है, ये माशरे के अंदर इस तरीके से जाहिल शख्स के तौर पर रह जाएगा, इसके लिए बहुत जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी, तो इतनी बुनियादी तालीम तो इसके पास हो कि ये बाद में सर्वाइव कर सके, सिर्फ इतने दे सकते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि भाई मुझे मेडिकल कॉलेज की फीस के तौर पर 10 लाख रुपए जमा कराने हैं, तो मुझे, मैं मुस्तहक सहमे सादात हूँ, इसको नहीं दे सकते। कोई कहे कि जनाब मुझे PhD करना है और फला बाहर की यूनिवर्सिटी में मुझे, मेरा दाखिला हो गया है, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, सहमे सादात के लिए मैं मुस्तहक हूँ, मैं तो कहीं कमाता भी नहीं हूँ या मेरी तो बहुत सैलरी कम है। नहीं, ये हायर एजुकेशन की वाजिब नहीं है आप पर, यानी शरीयत के लिहाज से कोई और शख्स आपका इंतजाम कर दे, किसी की और इदारे की ऐसी रेफाई टाइप का इदारा हो कि जो कि इस तरह के जो टैलेंटेड नौजवान और बच्चे हों उनके लिए हायर एजुकेशन वगैरह के सिलसिले में पैसों का इंतजाम करें, वो एक अलग है। लेकिन सहमे सादात से सिर्फ बुनियादी तालीम का खर्चा दिया जा सकता है, हायर एजुकेशन का नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो वाजिब नहीं है, उसकी जिंदगी मुक्तल नहीं होगी। कोई डॉक्टर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, वो कोई और काम कर सकता है, लेकिन किसी और सैयद का हाथ मार के तो उसको डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता, PhD तो नहीं करवाया जा सकता किसी को, किसी का दूसरे किसी सैयद का हाथ मार के। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं, कफी तो अभी जाके कोई मुलाजमत तलाश करे, यानी कोई कहे कि नहीं मैं बस मुझे यही बनना है, तो ये तो शरीयत नहीं कहती ना कि आपको डॉक्टर ही बनना वाजिब है आपके लिए, तो सिर्फ ये बुनियादी तालीम के लिए उसको दिया जा सकता है। किसी भी तरह का कोई भी माली, चाहे वाजिब हो या मुस्तहब, उसको मुस्तहिक या गैर मुस्तहिक देते वक्त ये बताना जरूरी नहीं है कि आप उसे क्या चीज दे रहे हैं। आप उसको जो है तोहफे के उनवान से भी दे सकती हैं, सालगिरह बच्चे की आ रही है, आपने लिफाफे के अंदर पैसे डाल के सदका वाले जो पैसे हैं या सहमे सादात वाले पैसे हैं, और वो उस उनवान से उसी आदमी की मिल्कियत में पहुंच जाए जो कि मुस्तहिक है, उसके पास जाना जरूरी है, नहीं कि किसी और को। मसलन मुस्तहिक शराइत शौहर के अंदर पाई जाती है और आपने वो जो है उसके बीवी के हवाले कर दिए पैसे, ये नहीं चलेगा, या उसके भाई को ले जाकर दे दिए, ये नहीं चलेगा। जिसमें शराइत आई, जिसमें शराइत हो उसी के कब्जे के अंदर वो पैसा जाना चाहिए, सिवाय इसके कि वो खुद इजाजत दे दे कि भाई मेरे भाई को दे दीजिए, ठीक है वो मुझ तक पहुंचा देगा, मेरी बीवी को दे दीजिएगा मुझे दे देगी, वो खुद वकालत दे दे किसी और को, तो फिर उस तक पहुंचा सकते हैं, वरना उसी के हाथ में पहुंचाने जरूरी है, और ये उसको बताना भी जरूरी नहीं है कि किस मर्द का पैसा उसको दिया जा रहा है। मोहम्मद अच्छा, उसके बाद फिर एक मसला सादात के सिलसिले में ये भी आता है कि क्या हम सहमे सादात से किसी को हज जो उमरा या ज्यारत पर भेज सकते हैं? कोई है मसलन खानदान में, फूफी है, चची है, खाला है, कोई और रिश्तेदार है, बड़ा उनको तड़प है लेकिन गरीब हैं, हज पे नहीं जा पा रहे हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम उम्र तो निकाल ही रहे हैं, सही सैलानी भी हैं, नमाज रोजे की पाबंदी है, इनको हज पे भेज देते हैं इस पैसे। या इसी तरीके से ज्यारत की कोई बहुत तड़प रही है खातून और सैलानी है या उम्रे के लिए, तो ये बात याद रख लें कि इन पैसों से, हज के सिलसिले में पहले बात बयान कर दूं कि सहमे सादात से कोई शख्स हज के लिए मुस्तती नहीं होता, यानी उसको सहमे सादात से हम हज नहीं करवा सकते, हज वाजिब उसका ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये इतना हो सकता है कि मतलब वही साल के बराबर जितना डेफिसिट बनता था उतना हमने दे दिया, कुछ उनके पास अपना भी, उन्होंने वो मिलाकर दोनों पैसों को मिला के हज के बराबर हो गए, हज पे चली जाए, लेकिन खुद से यानी इस्तेदात उसकी पैदा करें हम कि मसलन अगर गवर्नमेंट स्कीम में मसलन जा रहे हैं और 3.25 लाख रुपए के अंदर मसलन हज हो रहा है, तो हम 3.25 लाख उनके सहमे सादात के तौर पर जमा करवा दें, उनको हज पे भेज देंगे, ये नहीं कर सकते। अच्छा इसी तरीके से ज्यारात पे भी नहीं भेजा जा सकता, वो अदा नहीं होगा, और ना उमरे के ऊपर भेजा जा सकता है, और हज की तो इस्तेताअत इससे साबित ही नहीं होती। वो मर्जी है, वो तो मैं कह चुका हूँ आपके, वो जिस मद में भी चाहे हज करे, चाहे वो उससे ज्यारत पे चला जाए, चाहे उससे मिलाकर हज पे चला जाए, चाहे वो उम्रे पर चला जाए, किसी और को दे दे, अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर दे, कोई और शख्स आ गया जो उसको लगा कि ये मुझसे भी ज्यादा मुस्तहिक है, उसने वही पैसे निकालकर उसको दे दिए, सैयद भी होना जरूरी नहीं है, हालांकि वो तो सहमे सादात के तौर पर उसने लिए थे पैसे, लेकिन उसको एक और गरीब नजर आ गया, उसने वो पैसे उसको पकड़ा दिए, उसके लिए जायज है, उसके लिए जायज है, वो जहां चाहे उस पैसे खर्च करे, बस ये कि वो इसराफ में ना खर्च करे, किसी हराम में खर्च ना करे, वो तो पहले से इसके ऊपर वैसे आम शख्स के लिए भी पाबंदी। तो इस तरह से कोई भी शख्स सहमे सादात से मुस्तदी नहीं होता। अच्छा अब उसके बाद अगला इसमें मसला है कि क्या सैयद को सहमे सादात से कोई चीज खरीद कर दे सकते हैं? तो इसके अंदर भी देखिए उलमा ने ये बात कही है कि सहमे सादात से कोई चीज खरीद कर नहीं दी जा सकती, आपको वो पैसे ही उस तक पहुंचाने पड़ेंगे। लोग इसके अंदर कहते नहीं, इसको हम फला चीज की इसकी जरूरत है ना, तो हम इसको ना राशन ही खरीद, राशन की जरूरत मांगने आया, आपने कहा देखो यानी हमने उसको राशन खरीदा, उसे घर ले जाकर पहुंचा दिया, नहीं ये गलत आपने किया। उसने आपसे आकर कहा कि भाई मुझे सैयद हूं, मुझे इलाज के लिए दवाओं के सिलसिले में पैसों की जरूरत है, आपने वो दवाओं का पर्चा लिया और खुद जाकर दवाएं खरीद के उसको पहुंचा दी, नहीं हो सला नहीं हुआ, ये आप असल में उस पैसे के मालिक ही नहीं थे, पैसे का मालिक तो उसको बनना था, फिर वो उससे चाहे वो दवा खरीद लेता या किसी भी काम में खर्च करता, उसकी मर्जी थी, ये आपने अपने जो पैसा आपका नहीं था उससे आपने खुद से उस इख्तियार को इस्तेमाल करके कैसे दवा खरीदी या राशन खरीदा, ये नहीं कर सकते, आपको वो पैसे ही उसको देने पड़ेंगे, फिर उससे वो जो चाहे करे। इसी तरीके से सहमे सादात देते वक्त कोई शर्त भी नहीं लगा सकते, देखो इससे तुम राशन ही खरीदोगे, देखो इससे तुम बच्चे के स्कूल की फीस ही पे करोगे, देखो इससे तुम दवाई ही खरीदोगे, नहीं, वो उसका मालिक बन जाता है, मालिक बनने के बाद वो चाहे तो उसी जरूरत में खर्च करे जिसका आपसे जिक्र किया उसने, चाहे किसी भी और मद में खर्च करते, उसकी मर्जी, वो उसका अपना पैसा बन गया, यानी उसको मुस्तहिक होना जरूरी है, गरीब होना जरूरी है, एहतियाज उसकी होनी जरूरी है, फिर ये इख्तियार उसके पास आ जाता है कि उस पैसे को उसी एहतियाज में खर्च करे, किसी भी और जगह खर्च करे, हम कोई शर्त लगाकर नहीं दे सकते। उसके बाद फिर एक आता है कि एक चीज और भी होती है कि क्या मकरूज सैयद को हम सहमे सादात से हिसाब करके अपना दिया हुआ कर्जा माफ कर सकते हैं? मसलन कोई सैयद हमसे कर्जा लेकर गया हुआ है। अच्छा जब हमारे कुमुस की तारीख आई तो हमने सोचा कि हमने जो उसको कर्जा दिया हुआ है इसको हम कुमुस में हिसाब कर लेते हैं और मैं उतना सहमे सादात माफ कर देता हूं इसको, तो क्या ऐसा कर सकता है? यानी कहीं ना जा रहे हैं ना आ रहे हैं, घर बैठे बैठे उसको उसका कर्जा सहमे सादात में हिसाब कर रहे हैं और माफ कर रहे हैं कि ये सहमे सादात अदा हो गया, बस मैंने उसका कर्जा माफ कर दिया। इसमें अगर सिस्तानी फरमाते हैं और शायद गालिबन दूसरे उलमा का भी नजरिया है कि ये खुद से ऐसा नहीं कर सकते, खुद से ऐसा नहीं कर सकते, एहतियात वाजिब की बिना पर या तो हाकिम शरह की इजाजत लें, मुज्तहिद के वकील से इजाजत लें जाकर जिसके पास इसका इख्तियार है इजाजत देने का, और कहेंगे मैं वो जो मुझे सहमे सादात अदा करना है मैं उस शख्स का कर्जा उस सैयद का माफ कर दूं, बाकी शर्तें तो पाई जाती हैं उसमें, तो जितना सहमे सादात का पार्ट बनता है मेरे कोर्स में मैं उतना उसको माफ करता हूं, हाकिम शरह इजाजत दे दे तो माफ कर सकते हैं, या उस मुस्तहिक ही को उससे आप विकालत ले लें कि देखो तुम में जो मैंने कर्जा दिया हुआ है तुम मुझे विकालत दे दो और विकालत दे दो कि मैं सहमे सादात में उसको हिसाब तुम्हारी तरफ से उसको कबूल करूं और उसके बाद सहमे सादात के तौर पर माफ कर दूं। वो जाहिर है जो तो जिसका जो मकरूज है वो वैसे ही आपको इजाजत दे देगा, हाँ हाँ बिल्कुल कर्जा माफ हो रहा है मेरी तरफ से, वकील बन के आप इसको कर लीजिए तो हो जाएगा, या आप उस तक ये बात नहीं रखना चाह रहे वैसे ही माफ करना चाह रहे हैं तो फिर हाकिम शरा मुज्तहिद के वकील से जाकर इजाजत ले लें, लेकिन खुद ही घर में बैठे बैठे बगैर दोनों की इजाजत के आप कहमे सहमे सादत माफ करता हूँ, यह अदा नहीं होगा एहतियात वाजिब की बिना पर। एक चीज और इसमें और बयान कर दी जाए कि क्या सहमे सादात को सैयद को हम महाना किस्तों की सूरत में दे सकते हैं? मतलब लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई ये हम जानते हैं कि अगर इसको अभी हमने इतने पैसे दे दिए ना, ये 30,000 रुपए, तो ये एक दो महीने में इसको खर्च कर देगा और उसके बाद तीसरे महीने फिर आ जाएगा हमारे पास लेने के लिए, तो ऐसा करते हैं इसको हम 5,000 या 4,000 रुपए महीना का भी किस्त बांध देते हैं इसके। नहीं, ये भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि हाकिम इशारा मुज्तहिद वगैरह की इजाजत नहीं। चाहे आप उसके लिहाज से उसको एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर ही देना चाह रहे हैं, लेकिन शरीयत कहती है नहीं, ये आप नहीं कर सकते। किसी और का माल है वो, उस पर आप इस तरह की शर्तें कैसे लगा रहे हैं? उसी का माल है, उसको आप किस्तें कैसे कर रहे हैं? तो जितना उसका हक बनता है उसको पूरा पूरा दे दें, उसे वो कैसे खर्च करे, क्या खर्च करे, ये आपका हेडेक शरीयत ने नहीं रखा है। खुद से आप महाना किस्तें बांध कर नहीं दे सकते कि भाई ये तो दो महीने में खर्च कर देगा इसको फिर मांगने आ जाएगा, तो बेहतर है कि हम पूरे साल का उसके किस्तवार एक शेड्यूल बना के दे देंगे, आके हमसे लेते जाओ, या उसको पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे, हर महीने जाके बैंक में जमा करा के ले लिया करो। नहीं, ये नहीं कर सकते। एक और भी मसला पेश आता है कि क्या सहमे सादात से किसी सैयद को कोई कारोबार वगैरह करवाया जा सकता है? लोग आमतौर पर करते हैं कि भाई ये हर दफा हर महीने मांगने आ जाता है, तो ऐसा क्यों ना करें कि मसलन इसकी दुकान में माल डलवा देते हैं मसलन सहमे सादात से, या हम इसको कोई छोटा मोटा कारोबार करवा देते हैं, क्योंकि वरना तो ये हर महीने सिर्फ इसको देते रहेंगे और ये कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, अपने आप को सेटल नहीं कर पाएगा, तो हम उसकी हमदर्दी ही के अंदर उसको सहमे सादात से कोई कारोबार करवा देने इसकी इजाजत नहीं। उसके जहां ये जरूर है कि मसलन आपने 5,000 उसके हर महीने के खराजात ज्यादा हो रहे थे और उसके लिए उसको जरूरतमंद हो रहा था और मांगने की जरूरत पेश आ रही थी, तो आपने 60,000 एक साथ दे दिए, जब उसके पास वो 60,000 आ गए तो उससे वो अपने और पैसे जो भी उसके पास है मसलन अगर मौजूद हैं या नहीं भी हैं, तो उससे अगर वो कोई कारोबार खुद से शुरू करना चाहे तो कर सकता है। जरूरी नहीं कि आप कहें कि भाई मैंने तो तुम्हें ये फला फला चीज बच्चों की फीस और दवा और उसके मद में दिए थे पैसे, ये तुम दुकान में माल कैसे डलवा रहे हो अपनी? नहीं, वो उसका मालिक बन गया, वो जो चाहे उससे करें, लेकिन हम खुद से ये नहीं कर सकते कि उसकी दुकान में माल डलवाएं या उसको कोई कारोबार करवा कर दें उस सहमे सादात से, या तो उसको पूरी पूरी जो अमाउंट उसकी बनती जितना शरह है उसका वो उसको दे दें, फिर उससे वो जो जारी करें।
رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.